जो अगर हम प्रोग्राम फॉलो करेंगे, हमारी प्रोग्रेस लगातार होती रहे, इसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए कुछ परहेज है। क्योंकि जब भी डॉक्टर दवाई देता है तो साथ में कुछ परहेज भी बताता है ना। अब परहेज अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो दवाई असर करती है, अगर परहेज ना किए जाए तो क्या होता है, दवाई लेने के बाद भी हम ठीक नहीं होते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? मान लीजिए आपका गला खराब हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए, और डॉक्टर आपको दवाई बताएंगे कि 5 दिन दवाई खाना, किंतु साथ में कुछ परहेज भी बताएंगे ना। अगर वो परहेज बताएंगे भी बर्फ नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना है ना, खट्टी चीजें मत खाना, तली चीजें मत खाना है ना, गर्म खाना खा के पानी मत पीना, ऐसी बात कुछ बातें बताएंगे ना, ताकि आपका गला ठीक हो जाए, है ना। और मान लीजिए आप गला की दवाई भी खाते रहें और साथ साथ आइसक्रीम भी खाते रहें रोज, गर्म पानी पीकर के ऊपर से गर्म खाना खा के ऊपर से पानी पी लें, या पकोड़े खाते रहें, तली चीजें खाते, तो गला ठीक होगा 5 दिन की दवाई खत्म होने के बाद? फिर गला ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही जो कुछ परहेज अगर हम करेंगे तो तब जाकर के ये राजयोग हमारे ऊपर असर करेगा। इसमें दो बातें हैं, एक तो मुख्य बात है मन की है और दूसरी बात अन्न की है। अन्न, मन और अन्न, मन भी शुद्ध होना चाहिए और अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, पहला परहेज मन का है, दूसरा परहेज अन्न का है, ठीक है, तो अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा अन्न जो है शुद्ध नहीं है, हम कहीं भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं, तो वो अन्न जो है हमें हमारे अंदर शुद्धता नहीं लाने देगा, हमारे मन को शुद्ध नहीं होने देगा, बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देगा, और हमारा कनेक्शन परमात्मा से कच्चा हो जाएगा। जैसे बताया ना, बुद्धि में अगर कौन कौन आ गया तो क्या हुआ, फिर बुद्धि में चाहो भी तो बुद्धि योग लगाना परमात्मा से लगता नहीं, फिर बुद्धि में जो भरा है वही याद आता रहेगा। और दूसरा मन है ना, या पहला मन, मन भी अगर हमारा स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा, तो भी हम चाह करके मन जो है परमात्मा से लगा नहीं सके। क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम तो ये आत्मा में यही हुई कि आत्मा में सातों गुणों की कमी होने से ही हमें बीमारी आई। सातों गुणों की कमी हुई जिससे हमें अंदर हमारे अंदर विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आए साथ साथ उनके बाल बच्चे भी आ गए, जल्दी चिंता गुस्सा उदासी क्या है बेसिकली, उनके ही तो परिवार है ना। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जल्दीबाजी का आलस्य करना, अलबेलापन करना, दूसरे में दोष निकालना, शक करना, अनुमान लगाना, भय, ये सब उन्हीं का परिवार है। दुश्मनी की भावना रखना, ये सब के सब उसी का परिवार है, उन्हीं विकारों का परिवार है जिससे कि हमें ये बीमारी होती है। ठीक बात है। अब सातों एनर्जी, हमको बेसिक बात तो ये कि सातों एनर्जी से भरपूर होना है, पावन सतो प्रधान होना है, और पावन सतो प्रधान आत्मा में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। आप जानते हैं, आपने देखा हुआ सीढ़ी का चित्र देखा ना, जब हम पावन सतो प्रधान है, फुल हैं, फुल इन सेवन एनर्जीज हैं, तो उस समय हमें कोई भी रोग नहीं है किसी तरह का, हम निरोगी हैं एकदम से, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। हमारे आसपास एक बहुत अच्छा ऑरा है लाइट का, लक्ष्मीनारायण के आसपास देखा ना आपने, लक्ष्मीनारायण के चित्र में देखा होगा, हमारे आसपास एक ऑरा है, उस ऑरा के अंदर हम रहते हैं, है ना, लाइट का ताज है एक, है ना, हमारे चारों तरफ जिसके अंदर हम रहते हैं, और उस पे हमें उस लाइट के ताज को कोई भी चीज अटैक नहीं कर सकती है, कोई भी रोग शोक, है ना, प्रकृति का कोई तत्व हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो वो ऑरा हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो मन के परहेज, सबसे पहले मन के परहेज डिस्कस करें। मन के तीन परहेज हैं। मन का पहला परहेज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है मन का पहला परहेज है। दूसरा परहेज जो है मन का है सत्संग, अर्थात अपने मन को सत्संग में लगाना है। तीसरा परहेज जो मन का है वो है दैवी गुणों की धारणा। अपने मन में हमको कौन से गुण धारण करने हैं? दैवी गुण धारण करने। दैवी गुण कौन कौन से होते हैं? अवगुणों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना। दैवी गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला दैवी गुण है सत्यता। सत्य मतलब मेरे जीवन में ट्रूथफुलनेस हो। सच्ची सच्ची ट्रूथफुलनेस क्या है? सच्ची सच्ची ट्रूथफुलनेस यह है कि अपने अनादि और आदि, अनादि में कहां हूं? परम धाम में, फुल मतलब एकदम चमकता हुआ सितारा हूं, और आदि कहां पर हूं? सत्युग में। सत्युग में कहां पर हूं? देवी देवता स्वरूप में हूं। ठीक है ना, वहां भी एकदम फुल पावन सत्व प्रधान हूं, परम धाम में भी एकदम पावन सत्व प्रधान हूं, विकार का नामो निशान नहीं, कोई विकार का भी, अपने अनादि आदि, ये मेरी सत्यता है, दिस इज माय रियल स्टेट, है ना, इसमें स्थित होकर अपने आप को वो समझना है, मैं फुल मून हूं, मैं जो अभी जो मेरी स्थिति है वो मैं रियल नहीं है, जो आज मेरे अंदर काम क्रोध लोमो अहंकार आ गया है, चिंता भय जल्दीबाजी गुस्सा ये सब जो आ गया, ये मेरी ओरिजिनल स्टेट नहीं है, ये तो आई इवन इस जन्म में भी बच्चा था तो नहीं थी, पैदा होने के बाद जैसे माता पिता को देखा और लोगों को देखा, वो मेरे अंदर एक्वायर्ड, दीज आर एक्वायर्ड थिंग्स, दिस इज नॉट नेचुरल टू मी, ये जो विकार आए हैं दिस इज नॉट नेचुरल टू मी, है क्या नेचुरल है क्या वो आपके अंदर? पैदा हुए तो थे क्या? नहीं थे ना, ये तो मेरे अंदर दूसरों से देखने से आए हैं, मैं अपने ओरिजिनल स्टेट में ये विकार मेरे अंदर नहीं थे, ठीक है, नहीं है ना, तो ये तो मुझे देखने से, दूसरे में देखने से मुझ में आ गए हैं, और इनसे मुझे दुख भी मिला है, बचपन में सब मुझे प्यार करते थे, मेरा चेहरा कितना इनोसेंट था, और अभी बड़ा होने पर मेरा चेहरा कैसा हो गया? उसी बच्चे को देखो जो बच्चा, मैंने आपने कहानी भी सुनाई थी ना आपको, एक छोटा बच्चा था, सबसे सुंदर चेहरा था उसका, है ना, उसका चित्र बनाया था, उसके कितने पैसे उसको मिले थे, और सबसे क्रूर व्यक्ति का चित्र बनाया, तो वही व्यक्ति जब बड़ा हुआ, वही बच्चा, तो क्या हुआ? सबसे क्रूर व्यक्ति बन गया ना, तो बड़ा होने पर क्या हुआ? वो वही अवगुण जब आ गए तो वही क्रूर बन गया, है ना, ऐसा तो पैदा नहीं हुआ था। तो मैं ओरिजिनली एकदम पवित्र था, सतो प्रधान था, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद, इवन ये जन्म में भी मैं ऐसा था, और मेरे से बड़ा हुआ तो लोगों की कीचड़ मेरे अंदर आती गई, गंदगी मेरे अंदर आती गई, और मैं एकदम से खराब हो गया। ठीक है, तो जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है उसको हम याद करें, उसमें स्थित होकर हर कर्म करें, संकल्प करें, बोल बोले या कर्म करें, संबंध संपर्क में भी आए तो उसी स्थिति में स्थित होकर के आए, स्वप्न में आए तो भी उसी स्थिति में स्थित होकर के आए। स्वप्न में कैसे आएंगे हम उस स्थिति में स्थित होकर के? अगर सोने से पहले अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे। हम लोगों को क्या सपने आते हैं, हम लोगों का भी सपना, हमें भी तो सपना आते हैं ना, किंतु पहले स्वप्न में क्या क्या आता था, खराब खराब स्वप्न आते थे। किंतु अभी स्वप्न में क्या आएगा, या तो हमें स्वप्न आएंगे हम दादियों के साथ बैठे हुए हैं, है ना, परिवार के साथ बैठे हुए हैं, या तो क्लास करा रहे हैं, या तो परिवार में बैठ के बैठे हैं दादियों के साथ बैठे हैं, या योग करा रहे हैं, या योग कर रहे हैं, है ना, या सत्युग में बाग बगीचों में घूम रहे हैं ना। अभी हमको यही स्वप्न आते हैं, अनादि और आदि और संगम के स्वप्न आते हैं ना। ये फालतू स्वप्न अभी हमको नहीं आते हैं। पहले कभी डरावने सपने स्वप्न आते थे, कभी कैसे स्वप्न आते थे, किंतु अभी वो स्वप्न नहीं आते हैं। तो अपने इसमें स्थित होकर के हर कर्म करना है ना, पवित्रता है ना, पवित्रता भी हमारा एक दैवी गुण है ना। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वप्न तक भी हम पवित्र रहे, है ना। और निर्भयता, जरा भी भय हमारे अंदर ना हो। और क्या चीज, अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता माना हम अंदर देखते रहे मैं कौन हूं, है ना। अंतर्मुक्ता माना एक सेकंड में शरीर से डिटैच, एक सेकंड में शरीर से डिटैच। जब अंदर देखें तो क्या महसूस करेंगे, मैं कौन हूं, एक सेकंड में शरीर से डिटैच। एकांतवासी, एक के अंत में खोए रहना। बेसिकली आत्मा काम किसे चलने वाला है, सारे कार्य किसे चलते हैं, ज्ञान से चलते हैं, पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से और शक्तियों से चलते हैं। तो सातों के सातों एनर्जी मेरे अंदर भरी रहे तो मेरे सब काम ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। कंफ्यूज हम कहां होते हैं, जब हमारे अंदर पवित्रता नहीं होती ना, शांति नहीं होती, प्रेम नहीं होते, सुख नहीं होते, तो क्या होता है, हम कंफ्यूज होकर के हर काम को डिले कर देते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर खराब हो जाती है, हम ब्लंट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं आपस में, तू मैं हो जाती है, मोह में आकर किसी से लगाव हो जाता है ना, किसी से टकराव हो जाता है, किसी के प्रति झुकाव रहता है। एक जिससे लगाव झुकाव है उसकी तो हम सब बात मानते रहते हैं, और जिससे टकराव है उसकी अच्छी अच्छी बात को भी हम खराब कहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता प्रदीप भाई, ऐसा होता है ना, जिसकी जिसके जिससे लगाव और झुकाव होता है उसकी हम हर बात को, खराब बात को भी अच्छा समझते हैं, है ना, और जिससे टकराव है उसकी अच्छी बात को भी हम क्या कहते हैं, देखो उसकी अच्छी बात को भी खराब कहते हैं ना। तो ये जो है स्थिति हो जाती है, ठीक है ना। फिर सरलता, इजी नेचर, है ना, सरल। जहां ईगो आती है ना वहां डिफिकल्ट नेचर हो जाती है, और हम अपने आप से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नाम मान शान की इच्छा के अंदर हम भटकते रहते हैं, कोई मान दे हमें। और मान क्या चीज है, अपने स्वमान में रहे हम कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं तो वो पावर हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। अपने अंदर की बात, अंदर समझने की बात, दूसरों को बताने की बात भी नहीं है, अपने अंदर की बात है, मैं चमकता हुआ सितारा हूं और मेरी कितनी पावर है ना? मैं जब चाहूं कहां भी जा सकता हूं, है ना, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो जब ये अंदर निश्चय रहता है तो कैसी स्थिति होती है, कैसी स्थिति होती है, अपने श्रेष्ठ सम्मान देके हम सबको सम्मान दें, कोई मुझे सम्मान दे ना दे किंतु मैं सबको सम्मान दूं तो क्या होगा, मैं सबको सम्मान दूंगा तो क्या होगा, दूसरे वाले क्या करेंगे, सामने वाले आप ही सम्मान देंगे, है ना, नहीं देवे तो कोई हर्जा नहीं है, किंतु मैं तो सबको मान दूं ना, नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको ही मान दूंगा तो क्या होगा, सबसे प्रेम रहेगा ना। तो सरलता, नम्रता, हम्बल नेचर, ये नहीं कि ईगो में आके मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, नहीं, नम्रता, ह्यूमिलिटी, जिसे कहते ना एक फलदार वृक्ष झुकता है और जो जिसके फल कम होते हैं इसके अंदर वो अकड़ के खड़ा रहता है ना, खजूर का पेड़ जैसे ऊपर खड़ा रहता है अकड़ के, है ना, और फलदार वृक्ष क्या होता है, अपने आप झुक जाता है, ठीक है। तो नम्रता है ना, उदारता है ना, लार्ज हार्टेड जिसे जनरेसिटी कहते हैं ना वो, और मधुरता मीठा बोल। ऐसा बोल बोले हम सदा, किसी को भी बोले इतना मीठा बोल बोले जो उसके कानों में क्या कहते हैं मिश्री घुल जाए। कहते जो मीठा बोलता है वो क्या करता है, कोयल मीठा बोलती है ना सारा सारे जग को अच्छी लगती है ना, कौवा क्या करता है कां कां करता है तो क्या करते हैं सब उसको भगाते हैं ना, नहीं ऐसा होता। तो क्या बनना है, कोयल नहीं बनना हमको, हम तो बड़े बड़े ऊंची इंसान है ठीक है ना, मतलब मीठा बोलना जब भी हमें जिससे भी बोले ऐसा बोले कि लोग याद करें, कितना देखो कितनी मीठी आवाज थी उनकी, कितनी नम्रता से कितने आदर से है ना, लोग खुश मतलब जब भी आपको याद करें तो किस किस रूप में याद करें, अच्छे रूप में याद करें ना, है ना। वो एक गीत आपने सुना होगा, सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है ना, सुना था। सदगुण है तो आप क्या हैं, हीरा है, और अवगुण है तो पत्थर, दोनों हीरा भी तो पत्थर है ना, वैसे तो हीरा भी पत्थर है और वो पत्थर भी पत्थर है, दोनों ही पत्थर है ना, किंतु सदगुण है तो हम हीरे के समान है और अवगुण है तो पत्थर के समान है। तो सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। आगे आगे कौन सी लाइन है इस गीत में, आगे कौन सी लाइन है यश, सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, इस धरती पर स्वर्ग बना लेना, इस धरती को स्वर्ग बना लेना है मानव तुझ पर निर्भर है ना, ये धरती को स्वर्ग बनाओ या नरक बनाओ किसके ऊपर निर्भर है, किस पर निर्भर है, इंसान पर निर्भर है ना। अगर हम सदगुण में व्यवहार करते दूसरों से तो क्या होता, यही स्वर्ग बन जाता है ना, और अगर हम अवगुणों में व्यवहार करते तो क्या हो जाता, हर घर में भी तो यही होता ना, अगर पति पत्नी बच्चे आपस में सदगुणों में व्यवहार करते हैं ना तो क्या घर हो जाता, स्वर्ग। भले आपके पास कितना मर्जी पैसा हो कितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो है ना, और घर में झगड़ा होता रहे, बड़ों का रिगार्ड ना करें, छोटों को प्यार ना करें, मर्यादाओं में ना चलें, तो क्या होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो आपके पास, चार पांच जने रहते हों और आपस में लड़ते रहते हों सारा टाइम, गालियां देते हो एक दूसरे को, तो क्या क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, स्वर्ग है यहां पर, इतनी अच्छी बिल्डिंग है देखो स्वर्ग लगा पड़ा, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नरक कहेंगे ना, नहीं कहेंगे अशोक भाई, ऐसा बोलेंगे ना, नरक है ना, है ना। तो हमें स्वर्ग बनाना किसके ऊपर आधारित है, पैसे से स्वर्ग बनता है क्या, सदगुणों से बनता है ना, अच्छे गुणों से, दैवी गुणों से बनता है, ठीक है। सरलता नम्रता उदारता है ना बताया, मधुरता धैर्यता है ना, धैर्यता पेशेंस, पेशेंस मैंने बताया क्या होती है, पेशेंस, पेशेंस माना वेट एनालाइज एंड देन एक्ट, डू नॉट रिएक्ट, पेशेंस निकालने से ही हम पेशेंट बनते हैं, पेशेंस को छोड़ने से, जो आदमी पेशेंस को छोड़ता है बार बार वो आदमी एक ना एक दिन पेशेंट बन जाता है। जैसे अभी भी जैसे सपोज हम अंधेरे में शाम के समय है और लाइट जली हुई है ना, और लाइट चली जाए तो क्या हो, तो हम क्या करें, तुरंत इधर उधर उठ के भागना शुरू कर दें, नहीं, वेट करें, थोड़ी देर वेट करें तो क्या होगा, अपने आप ही लाइट वापस आ जाएगी, लाइट नहीं आएगी तो भी आप देखेंगे थोड़ी देर में अंधेरे में भी थोड़ी देर में आपको दिखाई देने लगेगा, और फिर एनालाइज करें लाइट क्यों गई, सोचे लाइट क्यों गई, पूछे लाइट क्यों चली गई भैया, शायद ट्रिप हो गया होगा, चाहे ट्रिप देख लो साथ में बाहर ट्रिप बॉक्स में देख लो, ट्रिप हो गया है क्या, ट्रिप हो गया तो बटन को ठीक कर दो लाइट आ जाएगी, एक्ट करने का, रिएक्ट नहीं करने का, ठीक है। ऐसे जीवन में कोई प्रॉब्लम भी आए, कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ हो जाए, आपके घर में कुछ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, बच्चा फेल हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, है ना, आपके जो शेयर्स में शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, है ना, 2 करोड़ का 2 रुपए बन जाए, है ना, ठीक है, ऐसा भी हो जाता ना कभी कभी, 2 करोड़ कितने बन जाते, प्रदीप कुमार, प्रदीप राय सोनी, कभी कभी 2 करोड़ 2 रुपए बन जाते हैं ना, हाँ नहीं मतलब वो है ना, 2 करोड़ का 1 करोड़ भी मिल सकता है ना, मैं 2 करोड़ लगाया हुआ 1 करोड़ वापस मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना मतलब। और 2 करोड़ के ऐसा भी हो सकता है क्रैश हो जाए, एकदम क्रैश, 2 रुपए ही मिले बाकी, है ना। तो इसलिए कभी कुछ भी हो जाए, है ना, क्या करना है, वेट करो, एनालाइज करो, एक्ट देन एक्ट, ठीक है, वे करो सिचुएशन को भी। 2 रुपए रह गए, बाकी 2 करोड़ तो गए, 2 रुपए तो रहे ना अभी मेरे पास, कुछ और तो बाकी, 220 करोड़ तो मेरे पास बाकी है ना अभी, नहीं अगर वो भी शेयर में लगा दो, मैं 2 करोड़ चले गए, 220 तो बाकी है ना अभी, वो तो सदा हमारे पास है ना, उसको तो हम खराब नहीं करें ना, उसको तो 2 करोड़ के पीछे अपनी सेहत उसके पीछे खराब करें, रो रो के अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, 220 करोड़ तो खराब नहीं करें ना, क्योंकि 220 करोड़ अंत तक काम आएंगे, ठीक है, ये वाले है ना, नहीं तो हम अपने आप को एनालाइज करें ना कि क्या सचमुच में क्या चला गया। अच्छा जो चला गया मतलब मर भी गया तो क्या होगा, मैं रोऊं, मैं परेशान हूं, वापस तो नहीं आएगा, आएगा वापस, जिसको हमको भी वो चला गया, हमको भी जाना पड़ेगा, है ना। तो अपने आप को अगर सचमुच तीनों काल देखें, कोई सिचुएशन का भी तीनों काल देखेंगे ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। धैर्यता के बाद दृढ़ता, है ना, दृढ़ता, है ना, जो मुझे करना है करना ही है, दृढ़ता, चाहे जान जाए तो भी एक दृढ़ता से पहले एकाग्रता, है ना, एकाग्रता, एकाग्रता मतलब जो काम करूं मैं एक को, जब सपोज लक्ष्य मेरा एक होना चाहिए, मुझे क्या नजर आना चाहिए, सिर्फ अर्जुन को क्या नजर आता था, मछली नहीं, मछली की आंख, जो लक्ष्य है मेरा उसको अचीव करना ही है, जो भी लक्ष्य हम रखा हमने जीवन में उसको अचीव करने के बाद ही दम लेंगे, ठीक है ना, एकाग्रता, फिर एकाग्र होके फिर उसमें दृढ़ता में आ जाओ कि मुझे दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, एकाग्रता, दृढ़ता मतलब जिद नहीं है, अच्छे काम, जो अच्छा काम मैंने करने का निश्चय किया है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, घर वाले कुछ कहें, पड़ोसी कुछ कहें, जो मर्जी कहें, मुझे कुछ काम को करना ही है, ठीक है ना। फिर गंभीरता, है ना, ऐसा नहीं हो कि हम इतने इतने लूज बन जाएं कि कोई भी व्यक्ति आके हमें कुछ कहे, है ना, गंभीर माना मतलब बहुत ज्यादा, वो कल उसने बताया था ना, रामश्लोक भाई ने बताया ना, हमारे ब्रेक पावरफुल हो, है ना, हाँ, ब्रेक पावरफुल होने चाहिए, और दूसरा डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें, कोई भी व्यक्ति हमसे इतना ओपन ना हो कि हमारी जान को, जान ही लेने को तैयार हो जाए, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब एक कहते हैं सभ्यता, है ना, सभ्यता से हमारे साथ व्यवहार करे, कोई हमसे इतना लूज ना हो जाए कि जो चाहे वैसे बोले, है ना, जो चाहे जैसे करे, नहीं, हमारे अंदर इतनी एक इतनी बना के रखें अपनी, एक क्या बोलते हैं उसको, इंटेग्रिटी, है ना, कि कोई भी व्यक्ति हमसे लूज टॉक ना करे, है ना, जैसा चाहे वैसा व्यवहार ना करे, है ना, हमारी कुछ मर्यादाएं, हमारे कुछ नियम, उनके अनुसार वो हमसे व्यवहार करे, ठीक है, जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी, जो भी हमने चूज किया है जीना, जिस तरह से, उसको रेस्पेक्ट रिगार्ड दे, राइट, हम दूसरे के प्राइवेसी में डिस्टर्ब नहीं करते, तो कोई हमारी भी प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब हमारी जो एक कंफर्ट जोन है उसको खराब ना करे, ठीक है ना, ठीक बात है, रमणीकता, इतने बोरिंग भी ना हो जाए कि लोग हमसे बोर हो जाए, है ना, बैलेंस होना चाहिए, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस हो, है ना, मैं इजी भी हूं, केयर फ्री भी हूं, लोगों से मिलजुल के भी रहें, रमणीक भी लगें, है ना, बहुत सीरियस में सारा मुंह फुला के रहे, ऐसा भी नहीं हो, ठीक है, कहता कि ये आदमी सब लोग कहें इसके पास तो जाने में डर लगता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, है ना, ठीक है ना, आज्ञाकारी, है ना, और आज्ञाकारी भी होना चाहिए, अपने से बड़े हैं, उनका उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करके आज्ञा, जो कहे उनका कहना भी मानना चाहिए, है ना, वफादार, है ना, वफादार होना चाहिए हमें, ईमानदार, है ना, ईमानदार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ऑनेस्ट होते हैं वो सब जगह सक्सेसफुल होते हैं, सब लोग उनको लाइक करते हैं, फरमान बरदार है ना, फरमान बरदार होना चाहिए। निमित भाव, कभी भी अपना बोझ ना समझें कि जीवन मुझे बोझ है, ये बहुत परेशानी वाला है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये तन किसका है? मेरा नहीं है, भगवान का है। किसने दिया, किसने दिया तन ये हमें? भगवान ने। क्या कहते हैं आरती में, क्या गाते हैं हम लोग, क्या गाते थे पहले आरती में? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और असल में क्या करते हैं हम लोग, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है ना। एक्चुअली हम क्या, रोज आरती में तो गाया ना, इतने साल गाया ना, ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, तेरा तुझको अर्पण है ना, ये सब तेरे को दे दिया, तेरा सबको तेरे को दे दिया। तो अब जो तन उसको दे दिया तो फिर क्या, फिर क्या चिंता है तन की, है ना, चिंता है फिर तन की? मन भी उसको दे दिया, अब मन उसका हो गया, फिर जो वो कहे वो संकल्प हम करें ना, जो वो कहे हम वो भावना रखें ना, जो वो कहे हम वो एटीट्यूड रखें ना, जो वो कहे फिर हम वो स्मृतियां अंदर रखें, बाकी स्मृतियों को बाहर निकाल देना नहीं। और धन भी, ये धन किसका है जो लॉक, धन कौन कौन से धन होते हैं बताओ, धन कौन कौन से होते हैं? खाली पैसे को धन नहीं कहते हैं, सबसे बड़ा धन तो समय है ना, सबसे बड़ा धन कौन सा है? समय। जो समय हमें मिला है, जैसे अभी 7 दिन आपको मिले, ये धन नहीं, आपने सिर्फ धन नहीं कमाया क्या, धन कमाया कि नहीं कमाया बताओ, ये 7 दिन में कितना धन कमाया कि नहीं कमाया, ये खाली रहे कमाया ना, ये धन कितना काम आएगा आपको अभी जो 7 दिन में जो आपने धन कमाया, इतना धन सारी उम्र में कमाया था आपने क्या, सारी उम्र में इतना? प्रदीप मेहता जी, इतना धन कमाया सारी उम्र में? अभी तक आप 60 साल के होने वाले होंगे, 60 साल के हो गए नहीं हो गए, कितनी एज है? 54 में इतना धन कमाया आपने, जितना अभी 7 दिन में कमाया, कमाया? धन से खुशी मिलती है ना, तो उतने धन में जो आपने 54 साल की उम्र तक कमाया था उसमें इतनी खुशी नहीं मिली थी, किंतु अभी जो आपने 6 दिन में कमाया है उसे कितनी खुशी मिली है? बहुत खुशी मिली ना। हाँ, क्या करें, हाँ नजर आ रही थी ना अविनाश जी, पहले अभी तक जो धन कमाया था और अभी जो धन कमाया 6 दिन में उसमें कितना फर्क है ना? हाँ जी, और अविनाश जी वो तो धन भी खराब भी हो सकता है, ये खराब नहीं, ये शेयर में लगा दो तो इस कोई नुकसान नहीं हो सकता, 100% गारंटी है, मल्टीप्लाई करेगा है ना, 1000 गुना मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, कम से कम 1000 गुना मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, हैं जी। हाँ, मतलब इतना धन है, इतना धन जो लगाए अपने कमा लिया, इसको जाके 1000 लोगों में इन्वेस्ट कर देना, ठीक है, 10-10 रुपए के शेयर खरीद लेना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा है ना। 21 जन्म चलता रहेगा, आपको 21 जन्म कमाने की आवश्यकता नहीं है, अभी जो धन कमा लिया 6 दिन में, आपको 21 जन्म तक कभी भी कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं ऐसे, आपके आगे नौकर चाकर रहेंगे, दास दासी रहेंगे है ना। तो ऐसा सुंदर आपने अभी कमाई की है ना, तो ये जो है सबसे बड़ा धन है समय है ना, ये जो समय अब हमको समय मिलना, अब से ऑनवर्ड्स ये समय बड़ा कीमती, बहुत कीमती है, अमूल्य है, क्योंकि इस अब से ऑनवर्ड्स हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया परमात्मा से है ना, क्या मिल गया, डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया परमात्मा से, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे परमात्मा से बात कर सकते हैं, जब चाहे परमात्मा से मिल सकते हैं, किसी बात की राय ले सकते हैं, राय लेने के लिए आपको कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां चाहो वहां ऑर्डर करो, आ जाओ भगवान वो आ जाएगा, ठीक है। जब सिरदर्द हो जाए तो क्या बोलो, उसको आप बुला लो कि बाबा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आ जाओ मेरा सिर दर्द थोड़ा मालिश करो, वो मालिश कर देगा। जो कोई तकलीफ हो ना, कहीं भी चाहो वहीं आ जाएगा, ठीक बात है, करके करके देखना, उस यूज करके देखना उसको। जब है जी हाँ, सचमुच में ना ऐसा होता है ना, बिल्कुल सचमुच में ऐसा होता है। प्रैक्टिकली होता है, मैं तो प्रैक्टिकली देखा है, मेरे तो जीवन के इतने अनुभव हैं कि कैसे बाबा कैसे आपको इस, किसी और ने भी तो अनुभव सुनाया था ना अभी, किसने सुनाया था, आपने सुनाया था ना कैसे, जब आपको ट्रेन में तकलीफ हो रही थी तो बाबा क्या कर रहे थे बैठ के, छाती में दर्द होता बाबा क्या कर रहे थे, है ना, सारी रात आपका वो करते रहे ना, आपकी सिकाई करते रहे ना, है ना। सचमुच में ऐसा अनुभव मुझे भी बहुत अनुभव, मुझे इतने अनुभव है हार्ट के जब प्रोग्राम के दौरान, इतना कई बार इतना थक जाता था, बहुत थक जाता था, कई बार क्या होता था पेशेंट्स ऐसे पेशेंट आ जाते थे एक के बाद एक सीरियस हो जाते थे, आकर के सीरियस हो गए, अभी अभी सारा दिन क्लासेस कराओ, बीच में फिर पेशेंट सीरियस हो गया, उसको देखा, फिर रात में सीरियस हो गया, फिर कोई और सीरियस हो गया, फिर कोई और सीरियस हो गया, सारी रात जागना, सारा दिन जागना, मतलब एकदम एक दिन में एक मिनट भी सोना नहीं, सारी रात जागना, और कई बार तो तीन तीन चार चार रात जागने के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे, मतलब एकदम टायर्ड, एकदम कि अभी क्या करें, बोल भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें बाबा को बोलते, बाबा अब देखो आपका प्रोग्राम है, आप चाहो तो मैं बंद कर दूं, आप चाहो तो मैं सबको कह दूंगा आज के आप चले जाओ सबके सब, मैं भी तो कुछ क्लास करा नहीं सकता हूं, आपसे बोल नहीं सकता हूं, आपको देख नहीं सकता हूं। तो बाबा कुछ मिनटों में ही क्या करते थे, एकदम सारे शरीर की ऐसी मालिश करेंगे, चंपी कहते ना चंपी, ऐसी मालिश करते किरणों से एकदम सारी सारी बॉडी और मन दोनों फ्रेश, ऐसा जैसे फूल जैसे हो गए। अच्छा दादी जी हमें सुनाया करती, दादी पहले कभी कभी सुनाया करती कि मैं जब थक जाती हूं ना कभी कभी बहुत, अभी वहां सफर से आई, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर इतने लोग थे, इतनी बड़ी पार्टी थी, 5000 लोग आए हुए थे, फिर सब लोग मिलना चाहते थे, फिर रात को भी देर तक 1 बजे तक मिलते रहे, फिर ऐसे करते रहे, फिर सुबह उठ के फिर 6 बजे क्लास में आना था, मतलब लगातार दिन रात लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो थक जाते ओल्ड एज में ना, 70-75 साल की, 75 की एज, 78 की एज में। तो दादी की मालिश कौन करता था, दादी की मालिश जो है वो शिव बाबा किरणों से कर देता था, तो दादी एकदम फ्रेश हो जाती थी, है ना। तो पहले सोचते थे दादी की मालिश भगवान करता है क्या, मेरी नहीं कर सकता क्या, है ना। सचमुच में फिर मुझे भी बाबा ने अनुभव कराया कि बच्चे जो भी सच्चे मन से मुझे याद करेगा तो मैं क्यों नहीं मालिश करूंगा, है ना, मेरा काम ही है ना अपने बच्चों को कंफर्ट देना, आराम देना, मेरा नाम सुखदाता है ना, तो सुख दूंगा ना, नहीं सचमुच में करता है ना। तो निमित्त भाव, एक तो सबसे बड़ा धन कौन, समय, दूसरा धन है श्वास, ये श्वास जो बाकी मिले ना हमको, बाकी जो श्वास मिले, ये श्वास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक श्वास में हम अपने पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं, अगर हर श्वास में बाप को याद करें तो क्या होगा, पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी, ठीक है। श्वास के बाद है दूसरा तीसरा धन संकल्प, जो विचार है ना हमारे, ये भी बहुत बड़ा खजाना है, संकल्पों का खजाना, अच्छे अच्छे संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, सबके शुभ के संकल्प करें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, है ना। फिर गुणों का खजाना है, गुण जो बताए ना मैंने, ये सब गुण अपने खजाने हैं ना, शक्तियों का खजाना है ना, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात छोटा करने की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं, ये भी खजाना है। और सबसे लास्ट में स्थूल धन का खजाना है, तो स्थूल धन भी किस लिए है, आज मर गए कल को, कल आपके धन पे झगड़ा शुरू हो जाएगा ना, तो किसी काम का नहीं है धन ना, वो तो अच्छे काम में लगे, है ना, लोगों के भले में लगे, अच्छे कार्य में लगे, है ना, और वेस्ट नहीं करें, है ना, फिजूल खर्ची ना करें, फिजूल खर्च तो एक पैसा भी नहीं होना चाहिए, किंतु अच्छे काम में भले कितना मर्जी लगे, ठीक है, ये भावना से जब हम रहते हैं, और वो भी परमात्म श्रीमत पर लगे, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से जहां चाहूं जिसको मर्जी दे दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है हमारे ही धन से लोग गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, गंदे काम करते हैं, तो ऐसी जगह हम धन दें तो क्या होगा, हमारे धन का जो वो उस हमारे धन से पाप करेंगे उसका उसका शेयर किसको जाएगा, किसको जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी को धन दिया और उसने उससे पाप किया तो उसका उसका पाप का फल किस किस को मिलेगा? जिसने पैसा दिया उसको भी तो मिलेगा ना, है ना? और मान लीजिए मैंने धन किसी को दिया और उस धन से अच्छे अच्छे काम हुए, लोगों का भला हुआ, तो क्या होगा? उसका शेयर किसको जाएगा? हमें मिलेगा ना। हमने कोई ऐसी चीज बना दी जिसमें लोगों की सेवा हो रही है तो लोग दुआएं देंगे ना, है ना? तो धन भी हम उसकी श्रीमत के ऊपर लगाएं। अब हम कोई भी चीज खर्च करते हैं ना तो हम बाबा से डायरेक्शन लेते हैं, इवन हार्ट का प्रोग्राम करते हैं बाबा से डायरेक्शन लेते हैं, बाबा ये हार्ट का प्रोग्राम करें। अभी जैसे मैं हैदराबाद में प्रोग्राम शुरू किया, मैंने पहली बार अभी मधुबन से बाहर प्रोग्राम किया, माउंट आबू के बाहर प्रोग्राम किया, तो मधुबन में बाबा से जब मिला मैं तो बाबा को मैंने कहा, बाबा मैं अभी मुझे हैदराबाद में बुला रहे, वहां जाऊं? ये प्रोग्राम हैदराबाद में, हमारी वहां भी एकेडमी है। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं वहां जाऊं? बाबा ने कहा भले जाओ। बाबा की छुट्टी मिली है ना, तो बाबा ने छुट्टी मिली तो फिर अब उनकी श्रीमत के अनुसार करेंगे। अरे बाबा कहता बच्चे नहीं कर दो तो नहीं जाते थे। मुझे याद है हमारी दादी जी जो थे ना, हमारी दादी थे अभी जो अभी तो दूसरे जानकी दादी हैं, उनके साथ भी हमारा ऐसा ही है, पर बड़ी दादी जी जब थे तो उनसे ज्यादा अनुभव, क्योंकि अभी दादी जी दादी तो अभी बने हैं हेड, फिर उससे पहले दादी जो थे, तो हम ऐसे हमारे हम कहीं भी जाते तो हम पहले दादी से मिलने जाते हैं, छुट्टी लेने जाते हैं लास्ट में ना, जैसे पहले भी उनसे परमिशन लेते हैं जाने की, किंतु बाद में भी हम मिलने जाते हैं। तो कई बार दादी के साथ ऐसे, जैसे मेरी मानो मेरे को कोचीन में कॉन्फ्रेंस में जाना था, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हैं, वहां भी जैसे मैं 4-5 दिन रहने वाला था तो वहां कई सारे प्रोग्राम्स वहां के डॉक्टर्स के लिए, IMA के लिए और भी लोगों के लिए प्रोग्राम बुक किए हुए थे, उन्होंने सब जगह हॉल लिए हुए थे प्रोग्राम रखने के लिए, ऑलरेडी सब प्रोग्राम प्लान थे। मैं दादी जी के पास गया, दादी मेरे को अभी मैं यहां से हैदराबाद जाऊंगा, अहमदाबाद से फ्लाइट लेके मैं कोचीन जाऊंगा, दादी मुझे ऐसे ऐसे जाना, मैं छुट्टी 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 के लिए गया दादी के पास। तो दादी ने, गुप्ता जी जाना जरूरी है क्या? मैंने, दादी जैसे आप आज्ञा देंगे वैसे ही करूंगा। नहीं, दादी कहती नहीं गुप्ता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जाओ। तो बस अब दादी का इतना कहना, अच्छा दादी नहीं जाऊंगा। फिर बहस नहीं, दादी क्यों नहीं जाऊं, मेरी तो टिकट बुक है, मेरे प्रोग्राम इतने बुक हैं। नहीं, बस दादी ने कहा गुप्ता जी नहीं जाओ। अच्छा दादी जी नहीं जाता, बस मतलब कोई क्वेश्चन नहीं। अब दादी ने कहा नहीं जाओ तो नहीं जाओ, बात खत्म, क्योंकि उसमें हो सकता है उसमें कोई कल्याण समाया ना। बड़ों ने कहा इसका मतलब कोई ना कोई कल्याण है। हाँ मान लीजिए मैं ऐसे जाऊं अहमदाबाद जाऊं और अहमदाबाद में रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो, या जो फ्लाइट थी उस फ्लाइट में जाऊं वो फ्लाइट ही क्रैश हो जाए तो, है ना? तो मतलब होने कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं इस कारण से क्यों जाऊं, तुरंत फोन कर दिया मैंने, मैं कोचीन यहां से मैंने फोन कर दिया कोचीन के, मैं नहीं आ रहा हूं, आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। मैं श्रीलंका गया हुआ था, दादी जी पीछे बीमार हो गए, तो मेरे को दादी जी ने कहा गुप्ता जी वापस आज आ सकते हो? मैंने कहा दादी हाँ क्यों नहीं दादी, बस मैं बीच में ही सब प्रोग्राम छोड़ के आ गया। पर जो दादियां जो हमारे बड़े हमसे कहते हैं आज्ञाकारी में ना, उसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है ना, आज्ञाकारी बनने में तो बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है ना। तो हम मतलब जो भी कार्य करते हैं बड़ों की आज्ञा मान के करते हैं तो दुआएं हमको मिलती रहती है। ईगो में हुआ गया तो क्या कहेंगे, मेरा इतना पैसा लगा हुआ ऑलरेडी, मेरे 20,000 रुपये खर्च हो गए हैं, ऐसा हो गया, दादी मैं तो जाऊंगा, दादी क्या करेगी, कहेगी अच्छा चले जाओ। नहीं, तो हमें जो है अपने से जो बड़े हैं जिनको हम अपने से मानते हैं कि इनको इनकी आज्ञा मानने से हमें कल्याण है, इनको इनके हमारे प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कह रहे हैं ना, उनको मुझे क्या मतलब है, उनको मुझसे क्या है, उनसे मेरा क्या स्वार्थ है, कोई स्वार्थ है क्या उनको? प्यार में आके कहा ना, उनको ऐसे वाइब्रेशन आ रहे कि नहीं जाओ तो मैं नहीं जाओ तो नहीं जाओ, है ना? ठीक है ना, ऐसा हमारी मोल्डिंग नेचर होना। जिस देवता कैसे बनते हैं बताओ, अगर कोई पत्थर हो पत्थर का देवता बनाना कैसे बनेगा, पत्थर का देवता पत्थर कोई पत्थर आपको दें, किसी कारीगर को पत्थर दिया हमने कि इसकी मूर्ति बना दो, संगमरमर का मार्बल का पत्थर दिया इसकी मूर्ति बना दो, तो कैसे बनेगा देवता? चिजल लेनी पड़ेगी ना, चिजलिंग करनी पड़ेगी ना, और चिजल करे तो पत्थर चिल्लाना शुरू कर दे, नहीं नहीं ऐसे क्यों मारते हो, ऐसे क्यों मारते हो, तो क्या होगा? मेरे को हथौड़ी क्यों मारते हो, मेरे को हथौड़ी क्यों मारते हो, तो क्या होगा? देवता बन पाएगा? नहीं बनेगा ना। तो सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, सहनशीलता। जो सहनशील व्यक्ति होता है ना वही देवता बनता है। कहते हैं सहनशील व्यक्ति ही शहनशाह बनता है। उसके लिए बड़ी सी बड़ी बात भी सहन करना बहुत सहज होता है, वो सदा मुस्कुराता रहता है। और जो सहनशील नहीं होता वो थोड़ी थोड़ी बात में घबराता रहता है, डरता रहता है। और सहनशील कौन हो सकता है? जो व्यक्ति क्या हो, सोल कॉन्शियस व्यक्ति ही सहनशील हो सकता है ना। नहीं, सोल कॉन्शियस होगा तो क्या होगा, परमात्मा से शक्ति आती रहेगी और सहन करता रहेगा, है ना, नहीं तो घबरा जाएगा, है ना। नहीं तो ये जो दैवी गुण है ना, ये दैवी गुणों की धारणा जीवन में अति आवश्यक है। तो मैंने बताया मन के अंदर क्या हो, पहला ब्रह्मचर्य की धारणा हो, दूसरा क्या हो, सत्संग। सत्संग ना सत्य का संग हो। सत्य का संग क्या है, ये मुरली जो है ना सत्य बाप की है, है ना, सत्य बाप की मुरली है, एकदम 100% ट्रूथ है। और ये अपने अंदर भरनी है हमको, ये पॉजिटिव टीम है, ट्रूथ टीम है, ट्रूथ विचार हैं, ट्रूथ भावनाएं हैं, ट्रूथ एटीट्यूड्स हैं, ट्रूथ मेमोरीज हैं, ये अपने अंदर भरनी है हमको। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था ना मैं मुरली सदा जेब में ही रखता हूं ना, जैसे और भी कोई अच्छी मुरली होती तो मैं पुरानी मुरली भी जेब में रखता हूं, मुझे अच्छी लगती है ना, मैं बहुत पुरानी भी रख लेता हूं कई बार। और नई वाली तो जैसे आज की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली थी ना, हेडिंग कहते किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। तो ये लाइन बार बार मन में घूम रही है कि मेरे को किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बना, ऐसा कोई कर्म ना करूं कि कोई मेरा नाम बदनाम करे या मेरे बाप का नाम बदनाम करे। कि ब्रह्मा कुमार ऐसे होते हैं क्या, है ना, ब्रह्मा कुमार भी ऐसे बोलते हैं क्या, है ना, शिव बाबा के बच्चे भी ऐसे होके भी ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसे कर्म करते हैं क्या, कुल कलंकित हुआ ना। मान लीजिए मैं गुस्सा करूं, कोई गलत अमर्यादित बोल बोलूं तो क्या कहेंगे आप, देखो कितने साल से ज्ञान में है, कितने साल से अपने आप को, किंतु फिर भी कैसे बोलते हैं, बोलेंगे नहीं, कुल को कलंक लगा नहीं लगा। तो ये चीज बार बार घूमे है ना। तो मन में आज का दिया वरदान स्लोगन, बीच में कोई अच्छी लाइन है जो मुझे बाबा ने लगता है मेरे को बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे अभी एक बात समझ में आ गई कि मेरे विचार जो अंदर भरे हैं, मैं जो अंदर भरूंगा वही मुझे सुख या दुख देने वाला है। अगर मैंने अपने अंदर गंदगी भर ली तो क्या होगा, वो गंदगी मुझे ही दुख देने वाली है। अगर गंदे विचार भर लिए, गंदा कुछ देख लिया, गंदा कुछ सुन लिया, गंदा कुछ खा लिया, है ना, तो किसको दुख देगा, वो मुझे दुख देने वाला है। इसलिए मुझे क्या करना है, अच्छा देखना है, मतलब दूसरे में अच्छाई देखनी है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, और अच्छा ही पढ़ना है, और अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही सोचना है, ठीक है ना, ठीक है माता जी, भैरवनाथ जी, ठीक बात है कि गलत बात है, ठीक बात है गलत बात है, ऐसा मुझे अब निश्चय कर लिया। और ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है ना, है ना। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, सत्संग माना स्थूल में देखें तो सत्संग माना सत्य बाप का संग है ना। अब सत्य बाप तो ऊपर बैठा है ना, या तो बीच बीच में ऊपर जाते रहो, नहीं तो कम से कम उसकी जो सत्य बाप की मुरली है, जो मुरलीधर की मुरली, उसको तो हम पास रख सकते हैं ना, उस पर तो चल सकते हैं ना। यही तो बाबा की गीता है ना, यही तो श्रीमत है ना, यही तो डायरेक्शंस है ना। तो कम से कम रोज की रोज जो मुरली बाबा ने सुनाई उसको तो शाम तक पक्का कर लेना, उसमें बाबा ने क्या क्या डायरेक्शन दिए, कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसको तो मन में पक्का करके उसको तो अपने मन में धारण कर लेना। रोज की रोज मुरली अगर पक्की कर ले तो क्या होगा, यही सत्संग बन जाएगा ना, ठीक है ना, सत्संग। और तीसरा बताया दैवी गुणों की धारणा। अवगुण जब मन में कोई गुस्सा आए तो गुस्से को रोक करके उसका अपोजिट क्या है, गुस्से का अपोजिट क्या है? शांति और प्रेम। अगर मन में किसके प्रति जल्दीबाजी आए तो क्या है उसका इलाज? क्या है? धीरज, पेशेंस रखो, है ना। डिप्रेशन आए तो क्या करो? खुशी रखो, है ना, आनंद में आ जाओ, है ना। अवगुण को रोक के उसका जो उसका उल्टा जो दैवी गुण है उसको धारण करने का थोड़ी देर। जब भी अवगुण कोई मन में आए, कोई गलत काम आए, तो टाल दो मन में, अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे। किसी को डांटने को दिल करे तो क्या करो? नहीं, अभी नहीं डांटते, बाद में देखेंगे। हाँ, किसी को मीठा बोलने को दिल करे तो क्या करो? तुरंत बोल दो मीठा, देर मत करो। ये मत सोचो थोड़ी देर में मीठा बोलेंगे, नहीं, तुरंत बोल दो। किसी के प्रति अच्छी भावना आए तो तुरंत कर दो। क्या ख्याल है? उसको मत टालना, है ना, ठीक है। अशोक मनवानी, किसी के प्रति अच्छी भावना आए तो क्या करो? टाल देना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और बुरा बुरी बात आए तो क्या करना चाहिए? टाल दो। एसी ऑन किया हुआ क्या? बंद कर दो एसी, ठीक है ना। तो ये जो है दैवी गुणों की धारणा। और शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न का मतलब क्या है? एक तो सात्विक अन्न हमको खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक अन्न। सात्विक अन्न किसे कहते हैं? जो आपको सुबह क्लास कराई ना, शुद्ध सात्विक अन्न वो है। तीन तरह का अन्न होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अन्न वो है जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अंकुरित हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, जैसे बताया आपको बादाम, अखरोट जो बताया हार्ट को फायदा करते हैं वो हैं, है ना, हल्के स्टीम किए हुए भोज्य पदार्थ हैं, है ना, ये है सात्विक। सात्विक माना जो सात्विक शब्द है सात से, जो हमारी सातों एनर्जी को बढ़ाने में मदद करे। जैसे आपने फल खाया, फल खा के देखने में पहले कितना सुंदर लगता है, बनाने वाले की याद आती है ना, किसने बनाया? नेचर ने बनाया या भगवान ने बनाया कहते हैं ना, तो नेचर ने बनाया तो नेचर वाले को याद आएगी, नेचर कितना अच्छा काम कर रही है, भगवान कितना अच्छा काम, भगवान की धरती पर कितना अच्छी चीजें अवेलेबल, आज भी कितनी चीजें अवेलेबल है ना। तो फल खाने से उसकी याद आती है ना, और तुरंत खाया ना, तुरंत आपको एनर्जी देता है, खाएंगे ना सहज पचता है। कहते हैं फल जो ऐसा फल क्या है, जैसे कि मर्सिडीज है ना, जैसे तुरंत गया और आधे घंटे में पच जाएगा, एनर्जी तुरंत पच, और फाइबर भी देगा, फाइबर भी हाई क्वालिटी फाइबर देता है, सॉल्युबल फाइबर देता है ना, एचडीएल देता है ना, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, विटामिन ई देता है ना। तो उससे क्या होता है? जिंक मिलता है, डायबिटीज का जो रॉ मटेरियल है ना, इंसुलिन का रॉ मटेरियल, वो इस फलों में होता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को जरूर फल खाना चाहिए, नहीं तो इंसुलिन बनेगी नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा। भले आप कितनी मर्जी गोली खाते रहो, इंसुलिन बनेगी नहीं, राइट तो इतना अच्छा हमको ये भगवान ने दिया है, तो उसको जरूर खाना चाहिए फल, ठीक है। सब्जियां है ना, सलाद, सलाद जो होता है, सब्जियां जो होती है, कच्ची सब्जियां, लंच के टाइम थोड़ी कच्ची सब्जी खाने को कहते हैं ना, खाइए, उसे खाने से क्या फायदा है? उसमें भी हाई लाइफ फोर्स, फल में भी हाई लाइफ फोर्स एनर्जी, मैं बताया था आपको 10 से 15 हजार लाइफ फोर्स एनर्जी है ना। तो तुरंत आपके अंदर क्या होगा? खाते ही एनर्जी आएगी, चुस्ती आएगी, फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी, है ना। और ऐसी सब्जियां, सलाद खाने से फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी, ताजा दम की फीलिंग आएगी। स्प्राउट खाने से, स्प्राउट की एनर्जी कितनी है? 15 से 20 हजार। खाएंगे फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि आपको सुबह सुबह काम करने की उमंग चाहिए, है ना, उमंग उत्साह चाहिए, तो उमंग उत्साह मिलेगा, है ना। इसमें नेचुरल वो भी होते हैं, ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, जो ब्रेन का कनेक्शन, एक सेल का कनेक्शन दूसरे से जोड़ते हैं, एंटी डिप्रेशन का काम करता है, ठीक है। नींबू, फ्रेश नींबू क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी जो एंडोथेलियम है ना उसको स्टेबल करता है। सुबह सुबह अगर आपने नींबू ले लिया, पानी में डालकर के, सब्जी में भी लिया, दिन में भी लिया, तो नींबू क्या करेगा आपको? आपको गारंटी है आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। सुबह पानी से नींबू ले लिया ना, तो आपकी एंडोथेलियम स्टेबल हो जाएगी, क्रैक होने वाली हो तो क्रैक नहीं होगी। हरी मिर्च क्या करती है? हरी मिर्च भी फ्रेश है एकदम। हरी मिर्च में पाया गया, हरी मिर्च में ऐसा केमिकल है कि हरी मिर्च में एक तरह का जो आर्टरीज है ना, कोलेट्रल्स को ओपन करती है। जैसे देखते हैं हरी मिर्च खाते खाते पसीने आते हैं ना, उसके हरे पार्ट में वो चीज है, बीज में नहीं है। अगर आपको मिर्च तेज लग रही है तो बीज निकाल दीजिए, सिर्फ हरा पार्ट आपको खा लीजिए, ठीक है। तो आपके उसके अंदर नेचुरल सॉर्बिटेट जैसी टैबलेट है, सॉर्बिटेट खाते हैं जिसके नीचे रखते हैं, तो 3-4 मिर्च अगर दिन में खा ली, 3 मिर्च खा ली आपने, तो आपको जैसे सॉर्बिटेट की 3 गोलियां खा ली, राउंड द क्लॉक आपका एंटी एंजाइनल जैसे आपने खा लिया नेचुरल बिना साइड इफेक्ट के, तो आपको सारा दिन छाती में दर्द नहीं होगा, एंजाइना नहीं होगा, कोलेट्रल्स खुले रहेंगे, है ना। और दूसरा इसमें क्या है, ये जो हमारा जो पेट में ना एक हेलिकोबैक्टर पाइलराई होता है जिससे अल्सर बनते हैं पेट में, पेप्टिक अल्सर जो बनता है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलराई एक बैक्टीरिया होता है वो पहले पेट में जाता है उसके बाद अल्सर बनने शुरू होते हैं। तो इट हैज बीन फाउंड टू बी बैक्टीरिसिडल फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलराई, जिस चीज से पेट में अल्सर बनते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है हरी मिर्च, है ना। तो हरी मिर्च खाएंगे तो आपको कभी अल्सर नहीं बनेगा पेट में। वो लोगों को छोड़ दो, अभी कोई एसिडिटी नहीं होती, ठीक हो जाती है एसिडिटी ठीक हो जाती है, बल्कि आप हरी मिर्च खाएं ना हरा वाला पार्ट तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी थोड़े दिनों में, ठीक है। पेप्टिक अल्सर वाले भी खाएं तो पेप्टिक अल्सर बढ़ेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे नींबू पानी सुबह सुबह पिए तो उनको अल्सर बढ़ेगा नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। ये देखने में आया अल्सर वाले पेशेंट्स को, जीआरडी वाले पेशेंट्स को, जीआरडी ठीक हो जाती है 15 दिन में, अल्सर ठीक होने लगता है, ठीक है। और नींबू खाने से यूरिक एसिड कम होता है ना, यूरिक एसिड कम होता है ना। एक कप चाय पीने से नुकसान कितना होता है, बहुत नुकसान होता है। एक कप जो चाय पीते ना, ये बहनें कुछ चाय पीने अभी जा रही थी, गई चाय पीने नहीं गई, कौन कौन सी बहनें जा रही थी चाय पीने, हाथ उठाओ कौन कौन जा रहा था। एक कप चाय पीने से हमारी दिल की धड़कन 8 बढ़ जाती है, 8, है ना, और 64 घंटे तक बढ़ी रहती है, 64 आवर्स तक बढ़ी रहती है। और दूसरी कप चाय पी ली तो फिर और बढ़ जाती है, कितनी भी लाइट चाय पिए तो भी बढ़ती है। और आपको मैंने बताया ऑलरेडी हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है ना, हमने 2 कप चाय पी ली तो 16 बढ़ गई, मतलब 16 बार उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे हार्ट को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, हार्ट की रिलैक्सेशन खत्म हो रही है और धीरे 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 हम हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं, हाँ जी, अच्छी बात है ना, जल्दी जल्दी पेशेंट बने। मैं क्या, मैं ऐसी दुआ नहीं करता कि आप पेशेंट बने, मेरी तो दुआ ये कि आप बिल्कुल ठीक ठाक रहें, किंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो कर्म का असर से हम बच नहीं पाते हैं अधिकतर, जो भी कर्म हो जाते हैं, इसलिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है ना। तो चाय पीने से बहुत, और चाय पीने सबसे बड़ा नुकसान क्या है, चाय 4 घंटे के बाद विड्रॉल सिम्टम लेकर के आती है। जो आप 1 कप चाय पीते हैं ना तो उसका 4 घंटे बाद विड्रॉल शुरू होता है। विड्रॉल माना जैसे वो खून में जाना, खून में कैफीन कम होने लगती है तो अंदर से इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो चाय का कप अपने आप अपनी तरफ कहता है आओ मेरे को पी लो, आओ मेरे को पियो, है ना। तो 4 घंटे के बाद वो इरिटेशन जो है ना, उस पीरियड में आप कुछ भी नुकसान अपना भी कर सकते, दूसरों का भी कर सकते, बोलचाल में, व्यवहार में, है ना, आप परवश हो गए, दास बन गए चाय के कप के, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हम किसी के दास बने, है ना। कहीं भी रहे इंडिपेंडेंट रहे ना, चाय नहीं पानी से भी काम चले ना, चाय मेरे को चाहिए ही। सपोज भूकंप आ जाए, जैसे भुज में आया है ना, दिल्ली में भूकंप आ जाए, जहां पे आप रहते हैं वहां भूकंप आ जाए तो क्या होगा, अब चाय मिलेगी आपको, गैस भी गई, फ्रिज भी गया, चाय का डब्बा भी गया, चीनी भी गई, सब गया, दूध भी नहीं है, है ना। 10 दिन तक तो उस शहर में दूध ही नहीं आएगा, गवर्नमेंट दूध ही अवेलेबल नहीं करा पाएगी उस शहर में, है ना, चाय की पत्ती नहीं अवेलेबल कराएगी, है ना। तो क्या करेंगे उस समय, क्या हालत होगी हमारी, कहीं दबे पड़े होंगे और चाय पीने के दिल करेगा तो क्या करेंगे, है ना, नहीं ना। तो हम किसी चीज का दास ना बने, जब तक हमारा दिमाग अगर बिना चाय के काम करता है तो क्यों हम किसी चीज की आदत डालें। चाय भी एक एडिक्शन है ना, इट इज एडिक्शन, जैसे लोग कोई चीज का एडिक्शन करते हैं, सिगरेट का करते हैं, शराब का करते हैं, ये भी एक एडिक्शन है। तो हम किसी के वश ना हो, किसी के परवश ना हो, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो 4 परहेज हैं, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, और शुद्ध अन्न का मतलब एक और है, शुद्ध अन्न का मतलब है कि हम तो एक तो सात्विक अन्न तो खाएं, राजसिक और तामसिक ना खाएं। राजसिक खाएंगे तो क्या होगा, आलस्य अलबेलापन आएगा। आप पराठा पकौड़ा समोसा खाएंगे तो आपको क्या होगा, दिल में करेगा आलस आएगा, चलो सोते रहते हैं ना, देर तक सो जाते हैं, क्या फिर आज तो संडे है, चलो आज छोड़ो, आज नहीं जाएंगे, आज उठेंगे नहीं, आज वॉकिंग नहीं करेंगे, है ना, आज हम मुरली में नहीं जाएंगे, है ना। तो हमारे लिए कोई संडे नहीं है। संडे सांस लेने के लिए संडे होता है क्या? आज संडे को सांस नहीं लेंगे, चलो छोड़ो आज, ऐसा करते हो क्या? आज छुट्टी है, सांस नहीं ले, आज सारा दिन संडे को पानी नहीं पियेंगे, ऐसे करते क्या? आज संडे को खाना नहीं खाएंगे, ऐसे करते हैं क्या? संडे को सब, जब हम अपने शरीर के लिए हम खाना खाते, पानी पीते, सांस लेते हैं, तो आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, तो मुझे आत्मा का भोजन क्या? मुझे आत्मा का स्नान तो अमृत वेले होता है, सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, और मुझे आत्मा का भोजन तो मुरली है, तो ये मैं कैसे मिस करूं? जैसे मैं संडे को भी भोजन खाता हूं, पानी पीता हूं, ऐसे में संडे को भी मुरली तो सुननी है ना। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसने मुरली ना सुने, ठीक है? ऐसी लगन लगानी है अंदर, है ना? तो बल्कि ये पक्का करना है, जैसे मैंने पक्का किया अपने जीवन में कि मुझे, मैंने पक्का किया कि कभी भी मैं अपने मुख में बिना मुरली सुने कुछ डालूंगा नहीं, पक्का करना है। ऐसा धर्म धरत पड़ी, ये धर्म है इंसान का, है ना, कि मैं अपनी अपनी आत्मा को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकते हैं आत्मा को भूखा प्यासा? अभी कितने साल तो भूखी प्यासी रही ना, नहीं रही भूखी प्यासी, अब तो उसको कम से कम समझ गए, तो कम से कम उसको तो रोज रोटी खिलाना ना अभी, ना? नहीं, रोज स्नान कराना, नहीं, या नहीं कराएंगे? क्या ख्याल है? अभी तक तो आपने इतने साल आत्मा को रोटी, ना रोटी खिलाई, ना स्नान कराया, शरीर को तो कराया, किंतु आत्मा को स्नान कराया? कराया था आत्मा को स्नान? आत्मा को, आत्मा में इतनी गंदी हो गई, बांस हो गई आत्मा में, है ना, बांस नहीं हुई आत्मा में, बांस आती थी, है ना, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, विकारों की बांस, वर्ग चिंता भय की बांस, जिस पास में बैठता था ना उसको भी बांस आती थी, हमसे नहीं आती थी बांस, हमको दूसरों की बांस आती थी, कहते तू तो ये बहुत डरपोक आदमी है, बांस आई कि नहीं आई? बहुत चिंता करना, बहुत सेंसिटिव आदमी है, बांस आई कि नहीं आई? है ना, है ना, बहुत भावुक है, है ना, बहुत क्रोधी है, ये तो बांस आई कि नहीं? कितने क्रोधी आ, और बांस क्या होती है? यही तो बांस है ना, मतलब दूसरे आदमी को बैठ के अच्छा ना लगे आपके पास, तो बांस हुई कि नहीं हुई? और रहते आपके पास बैठने को ऐसे दिल करे कि आपके पास बैठे ही रहे, दिन और रात आपके पास बैठे रहे, उठे ही नहीं उनके, आपके पास से नहीं, ऐसे अच्छे व्यक्ति के पास बैठने को दिल करेगा ना, जो मीठा बोलता है, आपको बहुत मर्यादा से बात करता है, आदर से बात करता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड देता है, उसके उससे क्या दिल करेगा कि उसके पास बैठे ही रहे, वहां से उठे ही नहीं? ऐसा नहीं, उसे सुनते ही रहे, कुछ सुनाता रहे, कुछ सुनाते रहे, जिससे जिससे हमारा दिल मिलता है उससे उससे बात करते हैं ना, कैसे दिल करता है? रात में 12-12 बज जाते हैं, एक एक दो दो बज जाते हैं उससे बात करते करते, बहुत सलो बात मिलता तो क्या होता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा बने ना, बनेंगे ना ऐसा, नहीं बनेंगे ऐसा, है ना? तो शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न का मतलब है तामसिक, नहीं तामसिक माना जो लहसुन प्याज, नॉन वेजिटेरियन, बासी खाना, ये क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है, हम वो खा लेंगे ना तो क्या होगा हमारे अंदर? तो उत्तेजना, उत्तेजना क्या होती है? काम विकार की इरिटेशन होगा, इंद्रियों में इरिटेशन होगा, ये न्यूरल इरिटेंट्स हैं, स्टडी हुई है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। हमारे पता ना, सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है, तो हमारी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, हमारे अंदर जो ना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, कर्मेंद्रियां उत्तेजित होने लगती है, वो प्रोन हो जाती है दूसरों की तरफ देखने में, सेंसिटिव हो जाती है दूसरों की तरफ देखने में, ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये टेढ़ा क्यों बैठा, सीधा क्यों नहीं बैठा, आपको नहीं बोल रहा ऐसे में बोल रहा हूं, है ना, है ना, है ना, ये सो क्यों रहा है, है ना, मैं उत्तेजित, है ना, गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है। अब सोते तो आप क्लास में सोते, मैं आप गुस्सा थोड़ी ना करता हूं, प्यार से कहता हूं ना, भाई साहब देखो बैठ जाओ, सीधे आंख खोल लीजिए, है ना, गुस्से से तो नहीं कहता ना, है ना, नहीं तो नहीं तो उत्तेजना पैदा होता है। अगर मैं मान लीजिए अगर आऊं ना, अगर मैं कुछ लहसुन प्याज खा के आऊं ना तो क्या होगा, या कुछ ऐसा करके आऊंगा तो क्या होगा, फिर सहन नहीं होगा ना, उत्तेजना आएगी, है ना, इरिटेट होके बोलेंगे, गुस्से में आके बोलेंगे, है ना, तो वो नहीं, वो प्लीजिंग, हमारी नेचर प्लीजिंग होनी चाहिए, ऐसी नेचर, तो ये ऐसे भोजन हम खाएं नहीं। और अन्न का सीधा कनेक्शन मन से कैसे है, क्योंकि मन में जो विचार चलते हैं ना, उसका पोषक जो है ना, पोषण कहां से होता है? अन्न से होता है। मुझे याद है, मुझे ना पीछे एक तकलीफ हो गई थी कुछ दिन पहले, हाइपोग्लाइसीमिया होता था मुझे, बहुत सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, माना शुगर लेवल बहुत, मुझे कोई डायबिटीज की बीमारी नहीं थी, कि तो अपने आप ही कुछ ऐसा पता नहीं क्या था बॉडी में, कुछ शायद कोई छोटा ट्यूमर होगा, कुछ होगा या कोई गांठ होगी इंसुलिन की ना, कुछ ऐसी होगी कि वो मुझे ना मतलब अपने आप ग्लूकोज लेवल कई बार 28 हो जाता था, 28 है ना, 20 तक 21 तक भी मेरा ब्लड शुगर लेवल गया है ना, इतना शुगर लेवल लो हो जाता था मेरा पहले। और जब मेरा ब्लड शुगर लेवल होता था लो, उस समय मुझे एकदम गर्मी लगती थी, बहुत गर्मी, बहुत पसीने आते थे, बहुत घबराहट होती थी। मैंने कहा ना मुझे पीछे काफी तकलीफें हुई, तो मैं उस समय बस पसीना पसीना हो जाता था, काम करने को दिल नहीं करता था, बस मैं तुरंत लेट जाता था। तो मेरे को कहते थे भी आप जरा मुंह खोल लो, आपके मुख में हम लोग ग्लूकोज डाल दें, ग्लूकोज डाल दें या कुछ कर दें। तो मुझे बोल रहे हैं किंतु मुझे वो फील भी हो रहा है ना थोड़ा सा, किंतु मैं संकल्प भी नहीं चला पा रहा हूं, मुख भी नहीं खोल पा रहा हूं, ऐसे करे वो ऐसे भी नहीं कर पा रहा हूं, एनर्जी चाहिए ना उसके लिए भी, और विचार चलाना चाहूं विचार भी नहीं चला पा रहा हूं। तो जब लो ग्लूकोज हो गया तो विचार भी नहीं चलते हैं, है ना? तो विचार भी चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, अन्न चाहिए ना। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न के बगैर मन भी नहीं चलता है, राइट? अन्न से मन बनता है, ठीक है, मन की पोषण होता है मन का। तो अन्न का बहुत महत्व है, अगर मेरा मन, मेरा अन्न जो है सात्विक होगा तो मन में भी सात्विक विचार आएंगे, है ना। मेरा अन्न अगर तामसिक होगा तो तामसिक विचार आएंगे, मेरा अन्न अगर राजसिक होगा तो राजसिक विचार आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अन्न एक बार खा लिया, अगर आपने पॉइजन खा लिया और फिर कहो मेरे को उल्टी नहीं लगे या मैं बेहोश नहीं हूं, तो ये हो नहीं सकता है। एक बार अन्न अंदर चला गया तो फिर उसका असर होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अन्न जो है, शुद्ध अन्न का मतलब खाली ये नहीं, शुद्ध अन्न का मतलब और भी है कि शुद्ध अन्न बनाने वाला खुद राजयोगी हो, है ना, परमात्मा की याद में भोजन बनाए, विकारी कामी क्रोधी लोभी मोह अहंकारी चिंता भय वाला पुरुष भोजन बनाएगा ना, तो उसका असर मेरे मन पे होगा, उसके हाथ का भोजन खाऊंगा तो, ठीक है। इसलिए अपने जब भी भोजन बनाए परमात्मा की याद में बनाए और परमात्मा की याद में खाएं। इसलिए हमारा भोजन क्या? शुद्ध सात्विक भोजन। शुद्ध का मतलब शुद्ध मन से भोजन बनाए और शुद्ध मन से खाएं। शुद्ध माना जिसमें जिसमें आत्मा और परमात्मा की याद समाई हो, राइट? जो हम हैं उसमें, उसकी स्थिति में स्थित होकर भोजन खाना और बनाना। इसलिए हम कहीं जाते हैं, हम कहीं खाते नहीं है। हम लोग जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हमें सब, हम देश विदेश में कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, हार्ट की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, किंतु हम कभी भी किसी को, और वहां पैसे भी देते हैं, है ना, रजिस्ट्रेशन फी होती है हर हॉस्पिटल, हर कॉन्फ्रेंस की 5,000 6,000 10,000 12,000 कई बार 30,000 भी फीस होती है। विदेश में जो कॉन्फ्रेंस हो 30,000 फीस भी होती है, वहां की फीस डॉलर्स में होती है ना, तो वो फीस भी देते हैं, किंतु हम कभी भी वहां भोजन भी 5-star 7-star होटल से मिलता है, किंतु कभी भी हम वहां का भोजन नहीं खाते हैं। हम नाश्ता करके जाते हैं, जहां भी देश विदेश में कहां भी जाएंगे अपने सेंटर से लंच पैक करके ले जाते हैं, थोड़ा सा लंच, ज्यादा नहीं, दो चपाती एक सब्जी बस, वो पैक किया छोटा सा, वो बैग में रख लेते हैं, और जब लंच टाइम होता है ना सब लोग चले जाते हैं लंच पे, और हम लोग पूरा हॉल हमारे लिए खाली होता है, मैं अकेला ही होता हूं उस समय। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी देखा तो मैं अकेला ही होता हूं ऐसा करने वाला, तो उस समय मैं अकेला होता हूं, और पानी तो रखा ही होता है वहां पे, है ना, तो बहुत रॉयल्टी से बैठ के सारे हॉल में अकेला मैं बैठ के लंच करता हूं, ठीक है। और जो बैरे वैरे होते हैं उनको बहुत रेस्पेक्ट आती है, देखो ये डॉक्टर साहब विदेश से आए हैं, विदेश ना भारत से आए हैं, वहां तो वो विदेशी हो गए ना, यहां तो वो विदेशी होते हैं दूसरे वाले, तो देखो विदेश से आए हैं और देखो कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं, है ना, दो चपाती सिंपल सी बैठ के खा रहे हैं, तो सबके मन में रिगार्ड भी होता है ना, तो बाबा को भूलगा के बहुत प्यार से भोजन खाते हैं ना। तो अभी पहले पहले थोड़ा मुश्किल आती थी, किंतु अभी हम जब भी जाते हैं कहीं पर भी, यहां से हमारी दादी जी या हमारे जो भी होते हैं वो लिख के दे देते हैं, हाँ आप ये सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे ही भोजन खाएंगे, शाम का भोजन वहीं खाएंगे और दोपहर का भोजन पैक करा के ले जाएंगे। किसी के यहाँ शादी में जाते हैं, शादी में भी उनके यहाँ भोजन, शादी में नहीं भोजन नहीं खाते हैं ना, शादी में अगर आप देखो ना वो खाना बनाने वालों को इतना गंदे तरह से खाना बनाते हैं, बात नहीं पूछो, एक बार आप 5-star होटल में जाके देख लो ना, यूं ना काम करते करते यूं करते हैं फिर भोजन में हाथ लगा देते हैं, ठीक है। वो हाथ थोड़े धोके आते हैं, हाथ धोते हैं क्या? कुछ नहीं कर, मैं खुद देखा है 5-star होटल में। एक बार हमारे एक फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड तो नहीं है मतलब हमारी जान पहचान के हैं, ताज होटल में काम करते थे, वहां पर शेफ थे, मतलब जो खाना बनाने वाले अंदर, तो मुझे अंदर लेके गए, क्या देखो भोजन, अभी तो वीके बन गया तो उसने दिखा के गया, दिखाने के लिए गया, अंदर लेके गया। तो कई लोग ऐसे कर रहे थे, गर्मी का मौसम था यूं करके, फिर ये क्या कर रहे हो भैया तुम? हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए। रियली इट इज अ फैक्ट, हाँ सच्ची बात है। कोई चीज फेंकते नहीं है, वो लोग उसी में डाल के पका देते हैं, जो भी चीज बच जाती रात की ना उसमें डाल के पका देते। हाँ जी हाँ स्किन डिजीज होती है, वो खाना बना देते हैं, उसी से बनाते हैं, उसी से करते हैं। तो बेसिकली अपने घर में तो कितना ध्यान रखते हैं ना, अपने घर में कितनी सफाई से आप चीजें रखते हैं, कुछ चीज खराब होती फेंक देते हैं, वो फेंकते हैं क्या? 5-star होटल में भी नहीं फेंकते हैं वो लोग ना। तो इसलिए अपने खाना जो है ना, अपना एकदम शुद्ध खाना ना, शुद्ध है ना। तो हमें खाना तो बहुत प्यार से खाना चाहिए ना, कमाते किस लिए हो, है ना, शुद्धन तो कम से कम खाए ना। ये होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना, है ना, ये सब खाना गंदगी है एकदम, है ना। खुले में खाना मक्खियां बैठती हैं, मक्खी गिर जाती है तो कोई अर्जा नहीं, काली मिर्च समझ के उसमें पड़ी रहती है, ठीक है ना। आप बड़े चटाके लगा खाते हो, आ क्या बात है, क्या बात है ना। तो कभी नहीं खाओ, ठीक है, गंदे, हम गंदे थोड़ी ना, ब्राह्मण शुद्ध मन वाले हैं ना, है ना। कि खाना है नहीं खाना ना, शादी ब्याह में भी हम खाते नहीं, हम खाना खा के जाएंगे, पैसे दे के आ जाएंगे, उनको उनको बोल के आएंगे, हाँ आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे के आएंगे, और नहीं तो कई बार हम खाना पैक करके ले जाएंगे अपना ना, छोटा सा पैकेट ले जाएंगे, दोनों बैठेंगे एक साइड में, बाला और मैं, हम दोनों बैठ के कोने में बैठे खा लेंगे। उनको भी पता है कि ये नहीं खाएंगे, है ना। शुरू शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस करते थे हमारे रिलेटिव्स, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस नहीं, अभी तो बहुत, अब जब हम घर जाते हैं ना किसी के जाते हैं शादी में, तो सबसे पहले तो नई चादर निकालते हैं, नई ना नई शीट निकालेंगे, जहां बिछाएंगे ना तो नई शीट बिछाएंगे, है ना, जैसे देवता आए ना तो नई नई शीट बिछाएंगे, वहां पर अलग से बिछाएंगे, वो पुरानी शीट भी रखते नहीं है ना, पुरानी चादर पे जिसपे वो बैठे वो उसमें हमें नहीं बैठने को देंगे, नई नई चादर एकदम बिछाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बिठा के सब लोग हमसे मिलने आएंगे, है ना, फिर उसके बाद कहेंगे हाँ भी देखो देवी देवता बैठे, दोनों सफेद वस्त्र वाले, ठीक है। वस्त्र की कोई बात नहीं, वस्त्र तो हम जैसे मर्जी पहने, वस्त्र तो हम भी अभी तक ब्लैक ही पहनते थे, मतलब ब्लैक या जैसे भी कोट पैंट पहनते थे, दूसरे पहनते, अभी तक मैं टाई वगैरह लगाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ टाई शाई लगा के सूटेड बूटेड होके जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं सूटेड बूटेड रहते हैं, ये तो यहाँ पर हमें अब भी व्हाइट कपड़े अच्छे लगने लगे हैं, अभी काले वाले पहनने के अच्छा नहीं लगता है, पर मतलब पहले तो सब तरह के पहनते थे, अभी भी कलर कपड़े अभी भी मेरे पास हैं, है ना, तो हम लोग अभी भी कलर कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, कोई कपड़े पहनने की बात नहीं है, मन साफ होना, मन सफेद होना चाहिए, ठीक, कपड़ों की बात नहीं है, है ना, तो कपड़े की भी कोई बात नहीं है। तो अपने आराम से हम लोग रहते हैं, आराम से सब काम करते हैं, है ना, हमारे माता पिता हमसे खुश रहते हैं, हमारे भाई बहन हमसे खुश रहते हैं, कभी कोई तकलीफ होती है तो हमारे पास ही आते हैं, दुख सुख में हमारे पास ही आते हैं, है ना, सुख में भले नहीं आए दुख में तो हमारे पास आते हैं, है ना, है ना, कोई भी चीज छोड़ के हमारे पास आएंगे, कोई डिसीजन उनके घर में झगड़ा हो जाएगा तो हमसे डिसीजन लेने के लिए आएंगे, हमसे डिसीजन लेंगे, अच्छा आप हमारी बात सॉल्यूशन, हमारे आपस में प्यार करा दो, दोस्ती करा दो, है ना, है ना, क्योंकि उनको पता है ये इम्पार्शियल हैं, निस्वार्थ हैं, बेहद में रहते हैं, है ना। तो मतलब ये जो है फीलिंग हमारे प्रति उनके मन में अभी है, राइट, ऐसा हमको बनना चाहिए ना, नहीं बनना चाहिए, ताकि हमें भी लोग रिगार्ड, सचमुच सच्चे रिगार्ड से हमको, सच्चा रिगार्ड, झूठ मूठ का रिगार्ड नहीं देते हैं, सच्चा रिगार्ड देते हैं, उनको पता है ये हमारा, ये हमसे कुछ लेने वाले नहीं है, इसलिए भी प्यार होता है ना, है ना? तो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, शुद्ध अन्न, और हमको लेके आएंगे फिर सेब ला के रखेंगे, है ना, सेब लाके रखेंगे, दूध लाके रखेंगे, है ना, फल क्या देवताओं क्या चढ़ाते हैं, दूध और फल चढ़ाते हैं ना, दूध फिर लाके फिर हम लोग अपने हाथ से सेब काट के फिर सबको सेब खिलाएंगे, एक पीस खिलाएंगे, एक पीस हम भी खा लेंगे, है ना, तो सबको सेब का छोटा छोटा पीस लेके भी समझते प्रसाद मिल रहा है हमको सबको, है ना। सचमुच आपकी ये रेस्पेक्ट रिगार्ड बन जाता है जब आप मर्यादा जीवन में धारण करते ना। आज हमें लोग सोशल में हमको क्रिटिसाइज करते थे, हमारे रिलेटिव्स, कि तो आज कहते हैं आपने जीवन में कुछ नियम अपनाए ना, तो आप कहां पहुंच गए, हम तो आप कुछ भी नहीं, हम तो जमीन में पड़े हुए हैं। तो सचमुच में हमारी कुछ मर्यादाएं अपनाने से, जीवन में कुछ नियम अपनाने से आप पूजनीय बन जाते हैं। तो थोड़े से थोड़े ज्यादा हमने कुछ बदला नहीं है, और अन्न का कितना मन पे असर पड़ता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार क्या हुआ, एक सन्यासी जो थे, एक साधु थे, वो किसी घर पे जाके रात में चलते चलते रुक गए, है ना, किसी के घर रुक जाके रुके, बाहर एक घर बना हुआ था शहर के बाहर, उसमें रुक गए। गए तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं थक गया हूं, रात हो गई, मुझे रात को आश्रय मिलेगा। उसने कहा भले रुक जाओ। तो उसको खाना खिलाया, खाना खिला के और फिर वहां सो गया सन्यासी, साधु जी सो गए। सुबह सुबह उठ के चलने लगे, तो रात में जब वो खाना खा रहा था तो चांदी की चम्मच थी, तो उसने देखा चांदी की चम्मच, तो उसने क्या किया, अपने झोला था उसके पास, एक ना बैग था, तो उसको लालच आया साधु को कि ये चांदी की चम्मच, मेरे पास कई बार कुछ खाना पीने को मिलता है तो चम्मच मेरे पास नहीं है, तो उसने चम्मच क्या किया अपने झोले में डाल ली रात में। सुबह उठ के चला तो वो चल पड़ा सुबह उठ के, तो जैसे आगे चला थोड़ा आगे गया तो उसको चम्मच उसको यहाँ साइड में लगी, कुछ है इसमें पड़ा हुआ, तो याद आया चम्मच कहां से आई, तो उसने याद आया रात को मैंने चम्मच जो है खाने के बाद चम्मच अपने इसमें डाल ली थी। तो उसको आया कि मैं सारा इतने अच्छे परिवार का था, मैं बहुत अच्छे परिवार का था, जमींदार परिवार का था, पैसे वाले परिवार का था, वो साधु जो था संन्यास लिया था उसने जमीन अपना घर छोड़ के, घर में बहुत ठाठ बाट थे, तो साधु बन गया था, अभी कमंडल था, एक बस एक झोला था और लेके घूमता था। तो उसने कहा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज मेरे को चम्मच पे लालच कैसे आ गया, चम्मच चोरी करने का ख्याल कैसे आ गया, एक चम्मच के पीछे मैं चोर बन गया, ऐसा कैसे हो गया। तो उसने वापस, उसने कहा कुछ तो कारण है, वापस आया जिस घर में रात को रुका था, आगे पूछा कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं। उसने कहा स्वामी जी मुझे माफ करना, मैं तो चोर हूं। तो चोर का अन्न खाया तो उसके अंदर चोरी का भाव पैदा हो गया, ठीक है, सचमुच ऐसा होता है। तो अपना अन्न अपनी मेहनत का खाना चाहिए, है ना, किसी के भी अन्न, किसी का भी, किसी के पैसे पे कहते हैं दूसरे का सोना भी हमारे लिए क्या मिट्टी के समान है ना, हमें क्या करना उसे सोने का, ठीक है ना। देखो दिल्ली में हम रहते थे ना, दिल्ली में हम रहते थे तो हमें कितने खर्चे होते थे, बहुत खर्चे होते थे। पहली तारीख को ही हमारे 15,000 रुपए खर्च हो जाते थे, कमाते बहुत थे तो खर्चे भी बहुत बड़े बड़े होते थे। और हम यहां पर रहते हैं ना, हमारे 2,000 रुपए में भी हमारे पैसे बच जाते हैं मंथ के अंत में, खर्चा ही कोई नहीं है, ना कपड़ों का खर्चा है, ना खाने का खर्चा है, कोई बाहर खाते नहीं, कहीं बाहर कोई स्पेशल कपड़े नहीं चाहिए, यही ड्रेस 5 साल से चल रही है, 5 साल से पहने जा रहे हैं, है ना, 2-3 ड्रेस है, 3 ड्रेस ही चलती रहती है आराम से, है ना, एक जर्सी है स्वेटर, दो जर्सी है सर्दी में, वही कितने सालों से चल रही है, कोई आवश्यकता ही नहीं है ना? रोटी सिंपल रोटी खाते हैं सुबह, अंकुरित खा लिया, थोड़ा सा दलिया खा लिया, एक फल खा लिया, फिर दिन में थोड़ा इसबगोल खा लिया, थोड़ा सा सलाद खा लिया, एक रोटी सब्जी खा ली, नहीं मिलेगी तो खा ली, नहीं तो वो भी नहीं, कोई अर्जा नहीं मिले तो शाम को कुछ मिल फल, एक फल खा लिया, शाम को अगर सब्जी रोटी खा ली नहीं तो नहीं खा ली, एक शाम को एक कप दूध पी लिया, बस हो गया अपना काम, टोटल 25 रुपया खर्चा है बस, है ना, एक दिन में ना 25 रुपया खर्चा एक दिन का, बस 750 मेरा, 750 उनका, ठीक है, 1500 रुपया खर्चा, ठीक है, 500 रुपये फिर भी बच जाते हैं, किसी को चाहिए तो दे सकता हूं, है ना, तो और कोई खर्चा ही नहीं है, कोई फैशन हम नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना, कुछ बात ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं किसी का, किसी का कर्ज देना नहीं, किसी का कर्ज लेना नहीं, है ना, आराम से शांति से रहते हैं, सब आडंबर खत्म हो गए, इजी लाइफ हो गई, है ना। तो पहले कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी, फालतू की चीज खर्च करते थे, पाउडर का डब्बा लेने जाओ कितना महंगा आता है, क्रीम का डब्बा लेने कितना महंगा आता है ना, साबुन लेने जाओ कितना महंगा आता है ना, सब खर्चे खत्म हो गए ना। क्या ख्याल है सिंह साहब? सहज लाइफ हो गई, इजी लाइफ हो गई ना। तो मतलब गंदे देखने में गंदे लगते हैं क्या हम? है ना, गंदे नहीं लगते देखने में, है ना। तो मतलब ऐसा ही सिंपल सी लाइफ हो गई, एकदम सिंपल लाइफ है ना। तो ऐसी लाइफ हम जी सकते हैं ना, है ना। और एक लास्ट में तो ब्रह्मचर्य का क्या है, ब्रह्मचर्य के बेसिकली देखिए हम एक नए वर्ड ऑर्डर में जा रहे हैं। डॉक्टर शारदा बस मैं आपका भी लिख के देता हूं, अभी बस 5 मिनट लगेंगे, बस पूरा करके लिख के देता हूं दवाई। तो हमने एक नए वर्ड ऑर्डर में जा रहे हैं ना अभी हम। उस वर्ड ऑर्डर में क्या है, ये जो वर्ड ऑर्डर है इसमें अपवित्रता है, मतलब सेक्स इज द वे ऑफ लाइफ है ना, इसी को प्यार समझते हैं ना? और जो नया वर्ड ऑर्डर है उसमें क्या है, पवित्र जीवन है, पवित्र गृहस्थ जीवन है। वह संतान की उत्पत्ति जो है कैसे होती है, वहां योग से संतान की उत्पत्ति होती है, वहां इससे संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। जो ये जो है विकार है, काम विकार, इससे आपके अंदर ब्लंट बॉडी कॉन्शियसनेस आती है। जब इसमें आप संलिप्त होते हैं तो क्या होता है आपके अंदर, एकदम बॉडी एकदम एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस आती है। आती कि नहीं आती है? और वही बॉडी याद रहती है फिर ना? फिर देह और देह के संबंध याद आएंगे ना, देह के पदार्थ ही याद आएंगे, इनसिक्योरिटीज पैदा होंगे और देह के स्वभाव संस्कार ही याद आते हैं। वही व्यक्ति बार बार हमारी बुद्धि हमारी कॉन्शियसनेस पे छा जाता है, जिसके फिर उसके प्रति लगाव झुकाव पैदा हो जाता है, एक बंधन बन जाता है ना, संबंध नहीं बंधन बन जाता है। तो काम विकार कोई प्यार नहीं है, इट इज नॉट लव है ना। तो ये जब कहा जाता है ना, जब एडम और ईव जब स्वर्ग में थे, जब उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खाया तो क्या हुआ, वो लोग कहां जाके गिरे, कहां गिरे, हेल में गिर गए है ना। तो फॉरबिडन फ्रूट क्या था, यही फॉरबिडन फ्रूट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। जब देह को देखा, देह के वश हो गए। लक्ष्मी नारायण जो है वो एकदम पवित्र हैं, दोनों की तरफ ऑरा है दोनों के आसपास है ना, दोनों पवित्र, दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग या सी जैसे हैं, सी होता है ना, सी एक सी और दूसरा सी, हम इनकम्प्लीट हैं। एक सी दूसरे सी से मिलकर जीरो बनने की कोशिश करता है, हर आदमी वैसे जीरो है ना, जीरो है ना, तो जीरो बनकर के हमको रहना है ना। तो जीरो हम कैसे बनेंगे, दो सी मिलकर कभी जीरो बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते ना, बन सकते दो सी मिलकर, सी मिले दो तो जीरो बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे ना। तो सी कभी जीरो नहीं बनते मिलकर के। तो हम यहां कोशिश करते हैं, तो जब अगर हम आपको क्या करें, अगर हम अपने आप को परमात्मा की याद से परमात्मा को याद करें, जीरो बन के जीरो परमात्मा को याद करें, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हम जीरो बन जाएंगे। और सत्ययुग में वही है, हर आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन मिलकर के वहां दोनों का बैलेंस है, यहां पर दोनों का इम्बैलेंस है। यहां पर जो मेल बहुत ज्यादा मेल है उसके अंदर 95% मेल हार्मोन है, 5% फीमेल हार्मोन। मेल में भी फीमेल हार्मोन होते हैं, और जो फीमेल है उसमें 95% फीमेल हार्मोन है, 5% मेल हार्मोन है, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के तरफ झुकाव होता है, क्योंकि जब हम राजयोग करते रहते हैं धीरे धीरे हमारे हार्मोन्स बैलेंस में होते जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर जो मेल की नेचर है, मेल की नेचर में दोनों बातें आती जाती है, फीमेल भी कम, मतलब एक बैलेंस आता जाता है, और फीमेल में मेल की नेचर आती जाती है, तो बैलेंस होता जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का डोमिनेंट इक्वल बैलेंस होता जाता है। ये मेडिटेशन से फायदा होता है, राइट। तो हमारे अंदर एक बैलेंस आता है, सत्युग में ऐसा ही है। जैसे भी अभी 95.5 है ना, तो हमारे अंदर जैसे मेल है तो मेल में फीमेल ऑर्गन भी है, किंतु वो एट्रोफिड फॉर्म में है। डॉक्टर शारदा ये बात को जानती है, जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं, जब डिसेक्शन करते हैं तो मेल में भी ओवरी होती है किंतु एट्रोफिड होती है। हम आजकल सेक्स चेंज कर सकते हैं, सेक्स कैसे चेंज करते हैं, अगर मेल को फीमेल हार्मोन के इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी दाढ़ी मूछ खत्म होने लगती है, मुंह गोल होने लगता है, जो बॉडी पे बाल होते हैं बाल खत्म होने लगते हैं, ऑर्गन सिकुड़ने लगते हैं, है ना, और फीमेल जैसे चेहरा होने लगता है, फीमेल जैसे बॉडी बनने लगती है, गोल बॉडी बनने लगती है, और फिर उसकी थोड़ी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करके उसको फीमेल बना देते हैं, ऐसे फीमेल कोई अगर मेल बनना चाहे तो क्या करते हैं, उसको मेल हार्मोन लगाना शुरू करते हैं, उसको दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाती है, उसके बॉडी के ऑर्गन सिकुड़ने लगते हैं, है ना, थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी उसको फीमेल मेल बना देते हैं। अर्थात मेल और फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हार्मोन्स का फर्क है। सत्युग में क्या होता है, सत्युग में देयर इज अ बैलेंस, वहां पर 60-40 होता है, मेल फीमेल हार्मोन का जो बैलेंस है वो 60-40 है, यहां पर 95-90 है, 95 और 5 का है। आपको पता हो शायद, आपने किसी जिन्होंने पुरानी जर्नल्स पढ़े होंगे, 1800 समथिंग के जर्नल्स हैं, 1876 का जन्म मैंने देखा, तो उस समय जो हार्मोन्स का लेवल जो था, वो हार्मोन्स का लेवल जो होता है ना, इवन 1900 के शुरू शुरू के जर्नल्स भी देखे तो 90 और 10 का बैलेंस है। उस समय मेल हार्मोन 90 और फीमेल हार्मोन 10 था, और अभी 95 और 5 है। इसलिए देखो आज की लड़कियां देखो तो कैसी हैं, एकदम पतली दुबली मरने वाली जैसे, ना खाना पीना ना खाने वाली है ना। और पहले की हीरोइंस देखो तो कैसी थी, अच्छी शरीर से भरी हुई, भरा हुआ शरीर ना, और अभी देखो तो जैसे हड्डी और खाल बस, जैसे ना वो कहीं पे मांस है ही नहीं जैसे ना, नहीं ऐसी मेल जैसे आजकल के ऐसे हो गए ना, नहीं तो मतलब वो मस्कुलर कहते भाई ऐसा मेल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो मेल नहीं। सत्युग में एकदम बैलेंस, लक्ष्मी की जरा फोटो देखो, जरा लक्ष्मी कैसी है देखने में, मतलब प्रॉपर शरीर है उसका ना, तो ऐसा शरीर आप देखो। लक्ष्मी को देख के अभी किसी की नीयत खराब होती है क्या, दृष्टि खराब होती है क्या लक्ष्मी को देख के, और उसको देखो तो माधुरी दृष्टि तो देखो तो आजकल कौन सी वाली है, आजकल ऐश्वर्या राय है ना, उसको देखो तो क्या होगा, अच्छे भले आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है ना। और लक्ष्मी की देखो, दुर्गा की मूर्ति, दुर्गा भी तो लेडी है ना, वो भी तो कुमारी है ना, कभी उनको देख के किसी के मन में गलत बात आती है क्या, क्यों नहीं आती है बताओ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता धारण की है। हमारे पास जो भी बहनें क्लास कराने आती हैं या ब्रह्मा कुमारी हैं हमारे पास, जो उनको देख के कभी आपकी बुद्धि खराब आएगी क्या, बुद्धि में खराब विचार आएंगे, कभी नहीं आएंगे, वो भी तो बाई सेक्स देखो तो वो भी तो फीमेल है ना, किसी को बाहर किसी को और को देखो तो बुद्धि खराब होगी ना देख के, नहीं ऐसा होता है। अब मेल है यहां जो मेल है, उस मेल को देख किसी फीमेल की तबीयत, किसी की फीमेल में गलत बात नहीं आती है ब्रह्मा कुमार को देख के, किंतु वहां बाहर देखो तो बाहर वाले व्यक्ति को देखो तो बुद्धि खराब होती है ना, क्यों, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी धारणा है, राइट। तो हमें क्या करना है, सत्युग में ये फिर बैलेंस है मेल और फीमेल का, मां संतान की उत्पत्ति हमारे आसपास ऑरा होता है, जैसे से हम, मैंने आपको बताया जैसे से हम पवित्र, जैसे से हम हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति इकट्ठी होती है, पवित्रता शांति प्रेम, तो हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा है ना, हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा, बौरा बढ़ता जाएगा, मतलब वो एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठी होती जाएगी, और वो ऑरा क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें गुस्सा करता है, तो मेरे पास शांति और प्रेम का ऑरा है ना, तो उसका तीर लगा, तीर यहां आके रुक जाएगा, मेरे को नहीं टच करेगा, अर्थात मेरा मन उससे प्रभावित नहीं होगा उससे गुस्सा करने से, है ना। तो मेरा ऑरा जितना जितना चाहे मैं अपना ऑरा बड़ा बना सकता हूं, मेरा ऑरा उस कमरे की दीवार तक भी जा सकता है, अर्थात इस कमरे में जो भी आएगा वो शांति और प्रेम में खो जाएगा, आनंद में खो जाएगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई तो इस कमरे में घुसने आने वाला कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, पवित्रता का अनुभव करेगा, शांति खुशी का अनुभव करेगा, ठीक है, ठीक बात है, नहीं ठीक बात है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, है ना। आप शांति मन में आए तो एकदम शांत कैसे हो गया, मन शांत कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर शांति के ऑरा, शांति के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, किसी ने ज्ञान सुनाया नहीं तो आपके एंटर करते ही शांति आपको मन में होने लगी, क्यों होने लगी, क्योंकि वहां यहां के रहने वालों का ऑरा इस सारे शांति वन में फैला हुआ है, ये पत्थरों का ऑरा नहीं है, मकानों का ऑरा नहीं है, रहने वालों का ऑरा है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अपने अंदर इकट्ठा करेंगे तो ये जो है आप अपने मन में ब्रह्मचर्य का जैसे से पहले व्यवहार में संबंध संपर्क में पवित्रता को लेकर आएंगे, कर्म में लेकर के आएंगे, और फिर धीरे धीरे बोल में पवित्रता आती जाएगी, फिर मनसा में आती जाएगी, फिर स्वपन भी पवित्र हो जाएंगे, तो जैसे जैसे आप पवित्र होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कनेक्शन पावरफुल होती जाएगी और आप शक्तिशाली हो जाएंगे, और उतना आपसे परमात्मा से प्यार बढ़ता जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी किसी को बच्चे तो नहीं चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए क्या, देखो एक्चुअली सेक्स वॉज मेंट फॉर द्वापर युग में, जब द्वापर युग शुरू हुआ ना तो सेक्स वॉज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन, एंड नॉट फॉर रिक्रिएशन। आज क्या बन गया, इट हैज बिकम ए सेंस सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन बना दिया ना लोगों ने, साउथ वेस्ट वेस्ट वालों ने रिक्रिएशन का साधन बना दिया। देखो इट वॉज मेंट ओनली फॉर रिक्रिएशन। सत्युग में योग से संतान की उत्पत्ति होती है, वहां पर क्या होता है 60-40 का हार्मोन का बैलेंस होता है। आप देखो तो लक्ष्मी की फोटो भी देखो, नारायण की फोटो भी देखो, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। देवताओं की दाढ़ी मूछ होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर हार्मोन ही ऐसे हैं, और दोनों इक्वली बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं। और फीमेल में भी टेस्टिस है और मेल में भी ओवरी है। जब उनको संकल्प, उनके यहां क्या होता है, कोई वैध संकल्प नहीं होता है। जब उनके यहां बच्चा पैदा होना होता है तो बच्चे का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होता है कि बच्चा ऐसे लगता है कि मैं आपके यहां आना चाहता हूं। तो पति पत्नी को, जो पति पत्नी लक्ष्मी नारायण जो होंगे या जो भी पति पत्नी होंगे, तब उनके मन में संकल्प उत्पन्न होता है। और संकल्प उत्पन्न होने से क्या होता है, जो ऑरा जो है ना, उनका ऑरा ही आपस में, वो ऑरा के थ्रू, ऑरा माना मन, हमारे पास आसपास क्या ऑरा, क्या माना ऑरा का मतलब क्या, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, वो ऑरा के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसमिट होती है। और वो संकल्प दोनों करने से क्या होता है, वो जो ऑलरेडी, जैसे फीमेल में ऐसा हो सकता है, वो फीमेल में जो टेस्टिस होती है उससे स्पर्म और ओवरी दोनों से निकल के स्पर्म और अपने आप ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और बच्चे का मतलब वहां पर शुरू हो जाता है डेवलपमेंट होने, और बच्चा समय पर जन्म लेता है। बच्चा वहां रो के पैदा नहीं होता, वहां पे गर्भ महल होता है, गर्भ जेल नहीं होती है। गर्भ महल क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपरली डेवलप्ड बॉडी है, वहां ऑक्सीजन 50% है, यहां पर ऑक्सीजन 20% है, वहां ऑक्सीजन 50% है सत्युग में। इसलिए वहां पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई मच्छर, मक्खी है ना, कीटाणु, फंगस, ये कुछ होते ही नहीं है जिसे बदबू पैदा हो, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि सत्युग में पहले ऑक्सीजन, अभी रिसर्च भी हुई है इस पर, वहां जो है ना, जो आइस कोर ड्रिलिंग करके देखी गई है वहां पर, इसमें एंटार्क्टिका में आइस कोर ड्रिलिंग करके देखी गई, तो नीचे जमीन के नीचे 8 किलोमीटर नीचे जो है वहां पर जो गुफाएं पाई गई उसमें 50% ऑक्सीजन थी। अर्थात आज से 3000 साल पहले वो कहते हैं कि धरती पर 40-50% ऑक्सीजन थी, अभी कम हो गई है, वहां कोई काकरोच, चींटी, मकोड़े होते ही नहीं सत्युग में, सांप, बिच्छू नहीं होते वहां पर, राइट। तो सत्युग में ऐसी लाइफ होती है, तो वहां पर संतान की उत्पत्ति इस तरह से होती है, ठीक है। तो हमें सत्युग में जाना है ना, सभी को तो एक नया वर्ड ऑर्डर स्थापित करना है, और पवित्रता उसका बेसिक है ना, ठीक है। तो जितना जितना पवित्रता हम धारण करते जाएंगे उतना उतना हम क्या बनते जाएंगे, हाँ जी, सत्युग की ओर जाते जाएंगे, ठीक है। तो ये पक्का सत्य, सत्युग एक तो पवित्रता हो गई, या ब्रह्मचर्य कहें, शुद्ध अन्न और सत्संग, दैवी गुणों की धारणा। और लास्ट में एक बात और मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको कहानी सुना के खत्म करता हूं ये बात लास्ट की। ये जो हमारे जो विक्रम हम करते हैं ना, ये विक्रम थोड़े तो हमको उनका पाप का फल थोड़ा तो भुगना पड़ता है, पूरा हमारा माफ नहीं होता है, राजयोग से भी पूरा माफ नहीं होता है। ये मैं आपको एक कहानी से क्लियर कर दूं, एक छोटी सी कहानी से। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, किंतु बहुत ही कंजूस था, महाकंजूस था, पैसा बहुत इकट्ठा करता था पब्लिक से, बहुत पैसा उसने इकट्ठा कर लिया था, किंतु किसको देता कुछ भी नहीं था। एक बार एक साधु उसके दरवाजे पर आया, दरबार लगी हुई थी, तो उसने कहा, साधु कहता है कि अभी मैं 3-4 दिन से भूखा, मुझे कुछ खाने को दो। तो द्वारपाल ने राजा को सूचना दी कि राजन, बाहर एक साधु महाराज आए हैं और वो भूखे हैं, उनको कुछ खाने को मांग रहे हैं। तो उसने कहा, राजा ने कहा, नहीं नहीं कह दे, कुछ हमारे पास नहीं है, जाए आप किसी और के यहां जाए। तो साधु ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो खाना खा के ही जाऊंगा, यहीं से खाना खा के जाऊंगा, खाना लेके कुछ तो लेके जाऊंगा जरूर। तो उसने कहा नहीं, फिर वो खड़ा रहा वहीं पर ही। थोड़ी देर में फिर उसने कहा, राजा को जाके बोलो कि मुझे कुछ खाने को दे। तो फिर उसने कहा नहीं, साधु को बोलो जाए यहां से, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो फिर जो है, और फिर खड़ा रहा, तो फिर उसने साधु ने बोला थोड़ी देर में कि राजा को बोला कुछ भी दे तो मैं चला जाऊंगा, कुछ भी देवे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा को फिर द्वारपाल ने जाके बोला राजा को, राजा कहता है साधु कह रहा है कि कुछ भी दो तो जाऊंगा, इतने दिन तो नहीं जाऊंगा। तो उसने गुस्सा आया उसको कि मैं राजा हूं, यहां का ऑर्डर कर रहा हूं, तुम जाओ यहां से, जाता नहीं है। तो उसको गुस्सा आया, उसने कहा ये जो ना हमारे अस्तबल में जाओ, घोड़े जो घोड़े वो करते ना उसको लीद कहते हैं, स्टूल पास करते हैं उसको लीद कहते हैं, तो उसके कमंडल में जाके लीद डाल दो। कुछ खाने को बोलता है ना, कुछ देने को बोलता है, जाके वो डाल दो। तो उसमें डाल दिया, जाके उसके उठा के उसमें डाल दिया कमंडल में, चला गया साधु। थोड़े कुछ साल के बाद राजा जो है शिकार खेलने गया था, तो शिकार खेलने अपने मंत्री के साथ, अपने सेनापति के साथ और लोगों के साथ गया था। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, सब लोग छूट गए, वो किसी शिकार के पीछे पीछे भागा जा रहा था घोड़े पर, तो अकेला पड़ गया। और अकेला पड़ने के बाद जब अंधेरा हो गया तो उसको प्यास भी लग रही थी, थका हुआ था बहुत, घोड़ा भी थका हुआ था, उसको भी प्यास लग रही थी। तो उसने अंधेरा बहुत हो गया था, जंगल में जो है जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही थी, तो उसने एक पेड़ पे चढ़ के देखा कोई है इस जंगल में, कोई मतलब कोई ऐसा कोई हो, मनुष्य हो कहीं, कोई साधु महात्मा हो तो उसके पास में जाकर के आज रात काट लूं। तो उसने देखा तो एक जगह कहीं रोशनी दिखाई दी उसको, तो उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जाके उसने ये देखा एक झोपड़ी है, तो झोपड़ी पर नॉक किया, तो एक साधु बाहर निकला। उसने कहा, उसको अंदर लिया, अपने झोपड़ी में अंदर लिया, उसको जो भी उसके पास था खाने पीने खाना पीना उसको खिलाया, पानी पिलाया, घोड़े को भी पानी पिलाया, कुछ खाने को भी दिया, और जहां वो सोता था ना उस पे राजा को सोने दिया और खुद नीचे सो गया। और सुबह सुबह जब दिन निकला, राजा उठा, झोपड़ी के बाहर आया, तो झोपड़ी के बाहर एक माउंट जैसा बना हुआ था। माउंट समझते हैं, एक ना मतलब जैसे ना मट्टी का ढेर जैसा बना हुआ था ऐसे करके गोल गोल। तो उसने कहा साधु को, साधु जी ये मतलब साधु महाराज ये आपने क्या बना रखा है यहां पे, क्या ये क्या झोपड़ी के बाहर रखा हुआ है? तो उसने कहा राजन तुम्हें याद है मैं एक बार तुम्हारे पास आया था, 3-4 दिन से भूखा था, तो मैं भिक्षा के लिए आया था तुम्हारे पास, तुमने जो मुझे भिक्षा में दिया था ये वही है, तुमने जो दिया था मुझे भिक्षा में तो मैंने वही लाके यहां डाल दिया, तो तुमने दिया मैं फेंक तो सकता नहीं हूं, राजा का दिया हुआ भिक्षा थी तो मैं कैसे फेंकता, तो मैंने अपने झोपड़ी के बाहर लाके डाल दी। तो उसने कहा महाराज मैं तो थोड़ी सी दी होगी वो तो है ना, पर इतना बड़ा कैसे हो गया? कहते महाराज ये तो मट्टी लग लग के हर साल आंधी तूफान जंगल में आते रहते हैं, तो मट्टी लग लग के क्या हो गया, ये इतना बड़ा हो गया। तो राजा को बहुत गिलानी आई अपने मन में कि देखो मैं तो राजा था और एक साधु, इतना अच्छा साधु मेरे पास आया, उसको मैंने क्या बोला कि मेरे पास खाने कुछ नहीं है, और मैंने उसको क्या दिया खाने को, और ये साधु जिसके पास कुछ भी नहीं है उसने भी मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया, पानी पिलाया, अपने यहां रहने को दिया, अपना बेड मुझको दे दिया, तो मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो उसने कहा महाराज साधु जी मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, इसका पश्चाताप कैसे होगा, ये माफ कैसे होगा? तो उसने कहा राजन ये तो तुमने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी ना, सारे दरबार के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, तो तुम्हें भी अपनी बेइज्जती करा लो तो ये कम हो जाए। किसने कैसे बेइज्जती कराऊं? उसने कहा राजन तुम तो मतलब बहुत ही सभ्यता से रहते हो कि तुम जो है क्या करो, अपना जो ना तुम अपनी बेइज्जती कराओ, अभी सारी प्रजा तुमको ऐसी बेइज्जती की, तुम्हें गाली दे, तुम्हें पत्थर मारे, तो तुम्हारा ये पाप कम हो सकता है। उसने कैसे ऐसा होगा? उसने कहा राजन तुम ऐसे करो, तुम अपनी राजकुमारी को हाथ पकड़ के शराब पी के कपड़े ऐसे पहन के और सड़क पे घूमो कि राजा पागल हो गया, लोग ये देखे राजा पागल हो गया अपनी राजकुमारी का हाथ पकड़ के सड़क पे घूमता है, तो लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो उसने ऐसा ही किया। जब आदमी पश्चाताप करने के मूड में होता है ना तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जब गलत काम करता है तो उसको फील नहीं होता, किंतु जब पश्चाताप करने की इच्छा होती है तो क्या होता है, फिर कुछ भी करने को तैयार, जान देने को भी तैयार हो जाता है। तो उसने ऐसा ही किया और उसने ऐसा करके वो जो है अपना करके फिर आया वापस साधु के पास झोपड़ी में आया, तो साथ देखा था वो जो थी ना जो माउंट था ना जो मिट्टी का, वो तो खत्म हो गया था किंतु लीद अभी पड़ी हुई थी, लीद अभी पड़ी हुई थी। तो उसने कहा महाराज ये तो लीद तो अभी पड़ी है, कहता हूं माउंट तो खत्म, इतना बड़ा माउंट वो तो खत्म हो गया ना तुमने ऐसा किया तो। कहता हूं, कहता महाराज इसका ये कैसे खत्म होगी। कहता ये तो तुम्हें खानी पड़ेगी, इतनी तो तुमको, ये तो मूलधन है ना, ये तो खाना ही पड़ेगा तभी इसका पाप खत्म होगा, है ना। तो ऐसे ही जो हम पाप करते हैं पाप माफ नहीं होते पूरे, किंतु उसका ब्याज खत्म हो जाता है। मान लीजिए किसी से आपने 500 रुपए उधार लिया था 100 साल पहले, 1908 में किसी से आपने 500 रुपए उधार लिया था और आप मर गए, आपने वापस नहीं किया, वो 100 रुपया अगर आप 500 रुपए का अगर ब्याज लगाओ तो आज 2008 में वो मिलकर के 50 लाख हो जाता है। 500 का 1000, 1000 का 2000, 2000 का 4000, है ना, इसे बढ़ाते जाओ, 4 का 8, 8 से 16 होता है ना, 5 साल में डबल होता जाता है ना, 5 साल में डबल। पहले तो 20% का ब्याज था, पहले जमाने में तो था ना, पहले 20% का ब्याज, तो इतना ब्याज लगाते जाओ तो क्या होगा, आज देखो अगर आप तो 50 लाख रुपया हो जाता है, 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आज आपको 50 लाख उसका आप कहे इसका 50 लाख तुमको देना है तो 50 लाख दे सकते हो आप, दे सकते 50 लाख, नहीं दे सकते ना। किंतु राजयोग से क्या होता है, बाबा की याद से 49,99,500 रुपया आपका माफ हो जाता है। कितना माफ हो जाता है, 49,99,500 रुपये माफ हो। कितना वापस देना है अभी, 500 तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो 500 दे सकते हो ना, नहीं दे सकते, वो 500 रुपये बाबा कहता है बच्चे ये 500 रुपया लो दे दो इसको, है ना, मतलब वो 500 रुपये बाबा देता है अपनी जेब से कि बच्चे ले लो और दे दो, है ना, मतलब शक्ति देता है, सहन करने की शक्ति दे देता है कि वो आप आराम से सह लो और दे दो, ठीक है। तो ये राजयोग का प्रभाव होता है, क्लियर। मैं थोड़ी सी बात तो सहन करनी पड़ती है, ऐसे नहीं समझो कि राजयोग करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता, ऐसा नहीं है। वो इतना तो आपको मूलधन तो देना ही पड़ेगा, वो माफ नहीं होगा। इसलिए हमको जो हमने पाप किए हैं पिछले जन्मों में वो हमारे सामने अब भी आएंगे, किंतु हमारे पास शक्ति बाबा ने हमको दी, सहन शक्ति दी, शांति प्रेम सुख आनंद की शक्ति दी है, उसके सामने हमारी जो बीमारियां हैं वो छोटी पड़ जाती हैं, माफ नहीं होती है। आज मुझे तकलीफ, मुझे भी आज भी हार्ट की तकलीफ है ना, तो मैं प्रिकॉशन लेता हूं कि तू इस ये हार्ट की तकलीफ मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, तकलीफ नहीं देती है, या और भी कोई तकलीफ जिसको, जैसे हमारी दादियां हैं उनको तकलीफ है ना, जैसे मैंने बताया था हमारी जो मनोहर दादी पहले दिन आई थी उनकी रीढ़ की हड्डी के 3 वर्टीब्रा पर फ्रैक्चर है, किंतु उस वर्टीब्रा फ्रैक्चर होने के कारण वो उनकी लाइफ जियोपर्डाइज नहीं हुई है, आज भी वो अपने सारे कार्य करती हैं, लोगों से मिलती हैं, ऐसे ही मतलब हमारी दादी जानकी हैं, जो भी दादियां हैं या जो भी हम लोग भी हैं या कोई भी है, हमारा कार्य कोई कम नहीं हो गया है। उम्र बढ़ जाए तो उम्र बढ़ने के कारण कार्य खत्म नहीं हो गया, तो जो भी तकलीफें हैं हमारे लिए तकलीफ नहीं है, बल्कि वो भी सेवा का साधन बन जाती है। जैसे मुझे हार्ट की तकलीफ हुई तो उससे मुझे अनुभव हुआ, है ना, और उससे क्या हुआ, सेवा का साधन बन गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अनुभव आ गया, अथॉरिटी आ गई, तो जिससे मेरे अंदर ये मैं हार्ट का प्रोजेक्ट शुरू हो सका, है ना, तो सेवा हुई ना, उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ। आपको हार्ट की तकलीफ हुई, इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्या हुआ प्रदीप जी, फायदा हुआ ना, अगर हार्ट की तकलीफ, बेनिफिट ना, तो अच्छा हो गया ना। सरदार जी इस हार्ट की तकलीफ से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, यहां तक पहुंच गए ना, अगर हार्ट की तकलीफ ना होती तो यहां तक आते थे अशोक मनवानी, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ प्रदीप शेट्टी, फायदा या नुकसान, फायदा हो गया ना, तो मतलब ये बीमारी भी कोई नुकसान नहीं किया शारदा जी, किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई 5 लाख डूबा नहीं उनका, उनके पास तो लाइन लगी हुई, ठीक है, उनके पास लाइन लगी हुई है, वो आपका वेट थोड़ी ना कर रहे थे कि आपको फोन किया था कि आप आ जाओ मेरे पास, है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ उनका, है ना शारदा जी, नुकसान हुआ फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो मतलब कितने भी है सो लक्की ना, ये बीमारी भी हमारे लिए ना जाने कितने लोगों की सेवा करेगी ना, फायदा होगा ना इससे। तो इसलिए कोई बीमारी भी आपको, मिसेस तनेजा फायदा हुआ नुकसान हुआ? तनेजा भाई, तनेजा कहां बैठे, तनेजा जी कहां बैठे हैं? दांत के लिए गए। अच्छा अच्छा ठीक है ना, फायदा हो गया ना भैरवनाथ जी? फायदा हुआ नुकसान आर्टरी ब्लॉक होने से? फायदा हो गया ना। अविनाश कुमार फायदा हो गया ना? क्या ख्याल है, फायदा नुकसान? फायदा हो गया ना, भाग्यशाली है ना हम लोग। ठीक है, सबका दिल ठीक हो गया नहीं हो गया? तो मैंने आपको बताई थी ना, कौन कौन सी बताई थी? एक तो अमृत वेला, संपूर्ण पवित्रता, अव्यक्त फरिश्ता, और वो नहीं पता कर लेना नहीं है कोई बात नहीं, विधेय अवस्था। तो सबसे पहले उठते ही ना, मैं भी एक क्रिया मैं भी करता हूं, सबसे पहले अमृत वेला किताब से एक पॉइंट पढ़ता हूं, उठते ही ब्रश करके बैठ के पहले अमृत वेला किताब से एक पॉइंट पढ़ता हूं। अमृत वेला में अमृत वेला का महत्व होता है कि आज सुबह का, हाँ बस अभी, हाँ बस एक मिनट पूरा कर देते हैं। आपको आश्रम में जाना है, कौन सी ट्रेन में, राजधानी में जाना है? बस मैं अभी आपको जाके आपको तुरंत, आपको और के पास जाने की, मैं ही कर दूंगा आपका काउंसलिंग। तो अपनी फाइल सिर्फ लेकर के आप कर लेना है। तो अमृत वेला किताब से एक पॉइंट पढ़ लेता हूं, तो अमृत वेला समय का महत्व के बारे में रिमाइंडर मिल जाता है, वो पढ़ के अमृत वेला योग करता हूं, योग करके फिर संपूर्ण पवित्रता किताब से एक पॉइंट पढ़ लेता हूं, एक अव्यक्त फरिश्ता किताब से एक पॉइंट पढ़ लेता हूं, और एक पॉइंट विधेय अवस्था से पढ़ लेता हूं। उसमें अव्यक्त बापदादा के महावाक्य हैं, तो कैसे हमें पवित्र रहना है, कैसे हमें विधेयी बनना, विधेयी मीन्स सोल कॉन्शियस बनना है, कैसे हमें फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना है, तो वो हमें रिमाइंडर, एक आत्मा को सुबह सुबह भोजन मिल जाता है, ठीक है, शक्तिशाली आत्मा हो जाती है, और फिर अपना नहा धो के तैयार हो जाते हैं, ठीक है, फिर मुरली सुनने चले जाते हैं, ये वॉकिंग करके फिर मुरली सुन लेते हैं। इस तरह से हमारा रूटीन है, तो आप भी, मैं चाहूंगा इसी रूटीन को फॉलो करें तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। फिर सोते समय चार्ट भर लेते हैं, दिन में अटेंशन रखते हैं, तो ये दिनचर्या अगर आप करेंगे, और अभी अगले 3 मास कम से कम आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए, 1 पॉइंट प्रोग्राम माना, एक ही फोकस रखो कि हमें ब्लॉकेज खोलना है, दिन रात एक ही अटेंशन रहे, हमें ब्लॉकेज खोलना है, तो ये अटेंशन रखेंगे तो आपका ब्लॉकेज जरूर खुलेगा, ठीक है। एक ही अटेंशन, एक ही पॉइंट का प्रोग्राम रखो, भले अपना ऑफिस में जाना कम करो, है ना, क्योंकि एक बार ब्लॉकेज खुल जाएगा तो आपको बहुत शक्तिशाली अनुभव होगा। अक्टूबर मास में फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे, अक्टूबर या सितंबर में, जैसा भी पॉसिबल, हम आपको सितंबर में ही लेटर डाल देंगे, है ना, पर लेटर डालेंगे उन्हीं को जो जो अपना चार्ट रेगुलर भेजेंगे, ठीक है, हर मास 1 तारीख को मेरे नाम लिख के, और वो ग्लोबल, डॉक्टर सतीश गुप्ता ग्लोबल हॉस्पिटल एंड इस सेंटर शांतिवन आबू रोड, ठीक है, नंबर लिख देंगे, वो लिख के वो डाल देंगे, ठीक है, और आपको एक लेटर यहां से बना के देंगे, वो लेटर अपने एरिया के सेंटर इंचार्ज, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर इंचार्ज को दे देंगे, और वो जाके, ताकि आप जाके वहां जाके रोज मुरली सुन सके। अगर आपको, हमने ऐसे आपको बेसिक बातें बता दी हैं, फिर भी आप चाहें तो साप्ताहिक कोर्स दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप मुरली सुनना रोज शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उस पर लिख देंगे हम आपको कि आपको मुरली सुनना रोज अलाउड करें, और कोई तकलीफ हो तो उनसे शेयर करें, अपने मन की बात शेयर करें, है ना, लोकल डॉक्टर से भी शेयर करें, किंतु उनसे भी अपने मन की टेंशन को, फैमिली टेंशन है कोई बात शेयर करें, ठीक है। इस तरह से जब आप अपनी दिनचर्या बनाएंगे चलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी, और धीरे 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 आप एकदम फ्री होते जाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूं आई हैव ब्रीफ यू इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, तो सुनने कुछ कहने सुनने को अब तो नहीं है ना, अब क्लियर हो गया सभी को बात, ठीक है।
अब गुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल, गुन ही गुन।